జగన్నాథ బలదేవ్ సుభద్రమైకి, శ్రీల ప్రభుపాదకి, శ్రీ శ్రీ రాధారాస బిహారీ భగవానికి, శ్రీ శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ హనుమానికి, శ్రీ శ్రీ గౌర్నిథాయికి జయ, శ్రీల ప్రభుపాదకి జయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ. సబ్లో ఫ్రెష్ అనా? 30 జనవరి 2016. అభి హమారా బర్సానా క్యాంప్ ఆ రే, తో బర్సానా క్యాంప్ కే విషయ మే ఏక బార్ పరమ పూజ్య రాధానాథ్ మహారాజ్ నే ఏక ప్రవచన్ దియా థా. ఓ ఉస్మనే ఉన్ననే బతాయా థా కి హమ్ లోగ్ బ్రజవాసియోం కీ సేవా కర్తే హై ఔర్ బ్రజవాసీ కితనే మహాన్ హై ఔర్ బ్రజవాసీ కో దేవతా లోగ్ సిద్ధ జీవ కే రూప్ మే దేఖతే హై. यानी कि चतुर्भुज जिनकी मुक्ति हो गई है, चार भुजा वाले दिव्य रूप में, वैकुंठ रूप में जिनकी मुक्ति हो गई है, जो भगवान के साथ निवास करते हैं, ऐसे लोग ब्रजवास प्राप्त करते हैं. मतलब जब देवता लोग ऊपर से इन लोगों को देखते हैं तो वो चार भुजा के रूप में ही देखते हैं उनको, जो मुक्त हो गए भगवान के धाम में, भगवान के साथ ही निवास कर रहे हैं. लेकिन हम लोगों को दिखाई पड़ते कैसे, पढ़े लिखे नहीं हैं, काले कलूटे हैं, गंवार है, शरीर में व्यंग है उनका, किसी को आँख दिखाई नहीं पड़ती है, कोई बीमार है, कोई गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल. क्योंकि हम लोग स्वयं मोतियाबिंद के मरीज हैं, हमारी दृष्टि ठीक नहीं है. जो देवता लोग देख रहे हैं वो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, हमको अलग दिखाई पड़ता है. तो हमको कैसे दिखाई पड़ता है, हमारी जैसी चेतना है वैसे हमको दिखाई पड़ता है. जो हमारी चेतना है उसके अनुसार हम दूसरों को देखते हैं. अगर हमारे मन में द्वेष है बहुत, एनवी हाँ, ईर्ष्या है बहुत, तो हम सब लोगों को ईर्ष्यालु देखते हैं कि सब लोग ईर्ष्यालु हैं, बहुत इगोइस्टिक है. अगर हमारे मन में ईगो है तो हम सब लोगों को देखते हैं कि कितना गर्विष्ठ है, कितना गर्विष्ठ है, कितना गर्विष्ठ. और जो सरल हृदय होता है वो सबको सरल हृदय देखता है. तो हमें वो लोग दिखाई पड़ते हैं इस प्रकार के, इस प्रकार से, क्योंकि हमारे मन में वो सारे दोष हैं. जो हमारे चश्मा हमने पहना हुआ है जिस रंग का, उस रंग की दुनिया हमको दिखाई पड़ती है. तो महाराज बता रहे थे कि कैसे हमको इन लोगों को देखते हुए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो जैसे दिखता है वो वैसे नहीं होता है, टोटल डिफरेंट होता है वो. खास करके ब्रज में, ब्रज में कौन से लोग जन्म लेते हैं, जिन्होंने पिछले कई जन्मों में इतने सारे पुण्य किए हैं, भगवान के भक्तों का सेवा किया है. हाँ, एक तो पुण्य होगा, अलग हो गया ना, पुण्य मतलब अच्छे काम. लेकिन दूसरे होते हैं भगवान के भक्तों की सेवा, वो उससे भी ऊपर है, वो पुण्य के रूप में हम गिन नहीं सकते उसको, उसके ऊपर के दर्जे में है. भगवान के भक्तों की सेवा जो है वो भगवान को प्रसन्न करती है. भगवान की सेवा करने से भी ऊपर भगवान के भक्तों की सेवा भगवान को अधिक पसंद होती है. तो एक तो उन्होंने पुण्य किए हैं, एक तो भगवान की सेवा की है, और एक भगवान के भक्तों की भी सेवा की है. और ये सब करने से भगवान को प्रिय हो गए हैं, इसलिए राधा रानी की दया से उन्होंने भगवान के धाम में जन्म लिया है. और अभी इससे बड़ा अमीर कोई नहीं हो सकता है. जो भगवान को प्रिय है उससे बड़ी अमीरता क्या हो सकती है. लेकिन आम तौर पर हम अमीर आदमी को देखते हैं तो क्या, कैसे पहचानते हैं उनका, बताइए. तो कोई अभी यहाँ से अंदर आया तो आपको लगेगा अरे बहुत बड़ा अमीर आदमी है ये। क्या देख के लगेगा आपको? उसका कपड़ा देखेंगे आप, और क्या देखेंगे? हाँ, क्योंकि जो गहने पहने उसने, शायद इतनी बड़ी अंगूठी पहने होगी, इतनी बड़ी जंजीर पहने होगी सोने की और क्या देख के लगेगा आपको अमीर है? उसका चेहरा देखेंगे आप तो तेज रहेगा बहुत। हर एक आदमी के चेहरे पर या तो धन का या तो विद्या का एक तेज होता है, भले वो इतना सुंदर नहीं होगा लेकिन आपको उसको देख के लगेगा बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत विद्यावान है। या तो उसके चेहरे पे उसके धन का ही तेज होता है, एक होता है ना राजबिंडा बोलते हैं हम लोग ना, भाई आएगा लगता है कि कोई ऐसे धनी परिवार का है, कपड़े भी सिंपल पहना होगा तो भी चेहरे पे देख के लगेगा कि ये बहुत बड़े परिवार का आदमी है, वो छुप नहीं सकता है। तो मतलब आपका जो ऐश्वर्य है वो आपसे कितना भी छुपाएंगे आप तो छुप नहीं सकता है, उसको लोग पहचान लेते कि अलग व्यक्ति है ये। लेकिन ब्रजवासियों का महत्व क्या क्या अलगता है, इतना बड़ा ऐश्वर्य उनके पास में है कि कृष्ण और राधा उनके हैं स्वयं, और राधा और कृष्ण उनको अपना मानते हैं। इतना बड़ा ऐश्वर्य होने पर उनको जानबूझकर राधा रानी कुरूप रखते हैं, कुरूप कुछ ना कुछ व्यंग्य होते हैं। आप ब्रज के कुत्ते भी देखेंगे ना तो एक का पैर टेढ़ा ऐसा है, एक के दो लेर लूले हैं पीछे के, एक का कान कोई खा चुका है, एक की कोई पूंछी निकाल चुका है। जानवर भी ऐसे बहुत भयंकर अवस्था में होते हैं। जैसे एक ब्रजवासी को चलता हुआ पंखा आंख में लग गया और आंख बीच में दो छेद हो गया आँख के, ऐसा कभी शहर में नहीं देखा नहीं आज तक, लेकिन पंखा ऐसे गिर गया उसके आँख पे पर और आँख को बीच में से काट दिया। एक लड़की खेलते खेलते खीर के भगोने में गिर गई जिसमें खीर बन रही थी, जो भगोना उसके साइज का था, बड़ी पंगत थी। ऐसे घटनाएं हम लोग बॉम्बे में नहीं सुनते कभी। तो दिखने में कुरूप रखते भगवान उनको, ज़्यादा पढ़े लिखे देते नहीं, पढ़े लिखना नहीं होता है सब लोगों को, धन नहीं होता है बहुत लोगों को। और वो ऐसा क्यों रखते हैं, किसी को आइडिया है? अपने इतने प्रिय लोग हैं जिनका वो लास्ट जन्म है, देवता उनको चार भुजा वाले रूप में देखते हैं, भगवान की राधा रानी ने अपने धाम में जन्म दिया उनको, लेकिन वही राधा रानी इतना प्रेम होने पर भी उनको कुरूप रख रही है, गंवार रख रही है, धन से भी दूर रख रही है। क्यों रख रही है? हाँ बराबर है, यस। और माया के जाल में नहीं फंसे, और बताइए। हाँ सिंपल रहेंगे, हाँ गर्व नहीं करेंगे। एक चीज ऐसी है जो हमको भगवान से अलग करती है, अहंकार। एक चीज, वो एक चीज हमें भगवान को बहुत, भगवान से बहुत दूर ले जाती है। सब कुछ होने पर भक्ति भी आपके अंदर, लेकिन साथ में अहंकार आएगा तो आप भगवान से बहुत दूर चले जाते हैं। तो कुंती देवी क्या कहती हैं, गर्व किस चीज का होता है? सुंदरता का गर्व होता है। हाँ, कोई आदमी हो या औरत हो, सुंदर होगा तो अपना एक गर्व होता है उसका, तो मैं कितनी सुंदर हूँ। दूसरा गर्व किसका होता है? धन का होता है। तीसरा गर्व किसका होता है? विद्या का होता है, कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, दिखने में सुंदर नहीं तो क्या हुआ, 10 डिग्री है मेरे पास, 50 लोग सामने पड़े रहते हैं गाइड करने के लिए। और एक है अच्छे कुल का जन्म, मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूँ, मैं मुख्यमंत्री का बेटा हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर का बेटा हूँ, कमिश्नर का बेटा हूँ, है ना। तो जन्म ऐश्वर्य श्रुति और श्री, जन्म ऐश्वर्य श्रुति यानी नॉलेज और श्री यानी सुंदरता, धन ऐश्वर्य। तो इनमें से किसी को भी वो ब्रजवासियों को अपने स्पर्श करना नहीं चाहते हैं, दूर रखते हैं उससे, ताकि वो हमेशा गर्वहीन रहे, नम्र रहे और हमेशा उनकी याद में रहे। ब्रजवासी भी बहुत धनी होता है ना तो उसका भाव बदल जाता है तुरंत। तो ये महाराज वर्णन कर रहे थे कि आप किन लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जो राधा रानी को प्रिय है, और बड़ी योजना के साथ राधा रानी ने उनको इस अवस्था में रखा है ताकि उनको कभी गर्व न हो। और वो उनके ही पास में रहे। और ऐसे लोग हमने देखे हैं कि रात को हम लोग राउंड लेते थे वार्ड में, अभी भी लेते हैं कभी कभी, एक डेढ़ बजे रात को मैं गए तो सब लोग थोड़ा सा डिम लाइट रखा है, सब अंधेरे में सो रहे हैं रजाई ओढ़कर, और जोर जोर से राधे 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 ऐसी आवाज़ आ रही है। तो हम तो राउंड लेने गए थे, तुमको लगा कोई पेशेंट को आँख में दर्द होगा ऑपरेशन के बाद, सर में दर्द होगा या और कोई कष्ट होगा, या उल्टी होती होगी, पता नहीं क्या क्या होगा। तो हमने डॉक्टर को जगाया और बोला कि पेशेंट लोग चिल्ला रहे हैं, उसको तकलीफ हो रही है। तो जब जहाँ से आवाज़ आ रही है वो रजाई को उठाया तो वो पेशेंट जो है ऑपरेशन के बाद में एकदम गहरी नींद सो रहा है, और वो गहरी नींद में राधे 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 बोल रहा है। आप समझ सकते हैं? अरे हमको जब हम सुबह जप करते हैं, नींद से उठकर अच्छी तरह सो के उठते हैं और जप करने बैठते हैं, तो हमको जप करते वक्त नींद आती है, ये लोग नींद में जप करते हैं। है समझ में आपको? ये लोग सो रहे हैं और सोने के अंदर भी जप कर रहे हैं, और हम लोग जप कर रहे हैं और जप करते वक्त सो रहे हैं। तो हम उनकी और हमारी स्थिति को समझ सकते हैं कि हम कहाँ हैं वो कहाँ हैं, कि रोम रोम में राधा और कृष्ण हैं। तो वो महिमा बता रहे थे ब्रजवासी लोग कैसे होते। ये सब मैंने बताया इसलिए आपको कि उसके बाद में क्या बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा जिन लोगों की सेवा करने आप आए हो वो तो महत्वपूर्ण है, कोई संदेह नहीं उसके अंदर, लेकिन जो लोग उनकी सेवा करने आए हैं वो भी उतने ही महान हैं, ये मत भूलना आप, क्योंकि आप भी ब्रजवास कर रहे हो, क्योंकि आप भी बरसाने में हो, आप भी उतना समय वृंदावन में रह रहे हो ना, बरसाना का वास कर रहे हो, वो लोग भी बरसाने के वासी हैं और आप भी बरसाने के वासी। तो कभी कभी हम लोग जिनकी सेवा कर रहे हैं उनका ही गौरव समझते हैं, और जिनके साथ सेवा कर रहे हैं उनको एकदम ऐसा ही मानते हैं, ये तो क्या हमारे साथ में आए, क्या बड़ी बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समझने वाली बात यह है कि जिनकी सेवा हम कर रहे हैं वो केवल महान नहीं होते हैं, जो उनकी सेवा के लिए आए हैं आप जैसे वो भी महान होते हैं। वैसे ही आप सब लोग जगन्नाथ जी की सेवा करते हो, वो जगन्नाथ जी की महानता सबको पता है, जगन्नाथ जी का गौरव सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं आपके किसी के मन में। लेकिन हो सकता है कि आपके मन में एक दूसरे के लिए इतना आदर ना हो जितना जगन्नाथ के लिए हो। तो जितने जगन्नाथ महान हैं उतने जगन्नाथ की सेवा करने वाले भी महान हैं। तो इस भाव से हमको ये सेवा करनी चाहिए, उसमें कोई सीनियर जूनियर हो सकता है, कोई जल्दी आया होगा भक्ति में, कोई बाद में आया होगा, कोई अभी अभी आया होगा, कोई 15 साल से वो सेवा करता होगा, कोई कल सेवा में ज्वाइन हो गया होगा, लेकिन ये सब हमारा कैलकुलेशन है। भगवान की दृष्टि से कैलकुलेशन क्या है ये कोई नहीं जानता है, वो कितने जन्म भगवान की सेवा करते करते अभी आपके सामने आया है, और आप इस जन्म में 15 साल सेवा किया होगा तो एक स्थिति है आपकी। तो गुरु महाराज ने अभी एक कॉन्फ्रेंस किया था, मेडिकल कॉन्फ्रेंस, वो डॉक्टर लोगों का था, तो उसमें जितने वक्ता थे उन्होंने बहुत लगे वक्ताओं ने एक बात बार बार दोहराई, ये बात दोहराई कि अगर हमारे मरीज के अंदर हम भगवान को देखेंगे तो हमें हमारे प्रोफेशन में कोई कष्ट नहीं आएगा हमको। अभी हम लोग हमारे मरीज को पैसा कमाने का साधन के रूप में देखते हैं, कस्टमर के रूप में देखते हैं, मरीज के रूप में देखते नहीं है। कस्टमर आ गया, अभी कस्टमर को भी पैसा देगा वो अपने को, कैसा उससे पैसा निकाली और अच्छी तरह से, कस्टमर और व्यापारी का स्वरूप हो गया है मेडिकल को। तो उन्होंने हर लोगों ने कहा कि अगर आप सब लोग अपने मरीज के अंदर वो भगवान को देखेंगे जिसको आप मानते हो तो आपके मरीज की सेवा में आपको कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही ट्रेनिंग काफ़ी है उनके अंदर अपने इष्ट भगवान को देखने की। वो अगर आप उसमें सफल रहे तो अपने इष्ट भगवान को आप क्या क्या करते हो सब मालूम है आपको, आदर करते हो, सम्मान करते हो, प्रेम करते हो, सेवा करते हो, हर चीज़ करते हो, आपको बताना नहीं पड़ता है, अरे भगवान है इनको प्रणाम करो, ये भगवान है, ऐसा बोलना नहीं पड़ता बार बार। जब आप जगन्नाथ की सेवा में आते हो तो आपको बार बार बोलना पड़ता है कि अरे आप मालूम है ना आज किस में जा रहे हो, जगन्नाथ की सेवा में जा रहे हो, जगन्नाथ भगवान है, ऐसा बोलना पड़ता है क्या बार बार? नहीं पड़ता। लेकिन वही भाव हमारे साथ में आने वाले के प्रति हमको रोज वैसा रहता नहीं है, आज अच्छा है तो कल बुरा है, कल बहुत अच्छा है तो कल बहुत बुरा हो जाता है वो, क्योंकि हम उन सब लोगों के अंदर वो जो भाव है भगवान का अंश होने के नाते उसको देखने में भूल जाते हैं हम लोग। रूप गोस्वामी भी वर्णन करते हैं एक तरफ इंस्ट्रक्शन में, हाँ उपदेशामृत में क्या वर्णन करते हैं कि एक होता है कनिष्ठ अधिकारी। आपको मालूम है कनिष्ठ अधिकारी क्या होता है? यस, नहीं, कनिष्ठ अधिकारी वो है जो केवल भगवान के विग्रह में भगवान को दिखता है, वो भगवान के विग्रह में भगवान को दिखता है और बाकी दुनिया को वो पहचानता नहीं, वो आदर भी नहीं करेगा उसका। वो जब मंदिर में आएगा तब भगवान भगवान करेगा, बाद में बाहर जाएगा तो एकदम पूरा बदल जाएगा वो भाव उसका बाहर नहीं पहुँचेगा। जब तक वो इधर है तब तक वो भगवान को प्रणाम करेगा, जैसे ही बाहर जाएगा वैसे अपना बिजनेस धंधा चालू करेगा, तुरंत उसका चेतना बदले हो जाएगा। उसको कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं। और मध्यम अधिकारी कौन है आप लोगों को बताना जरूरी है, बहुत ही खास करके जो डीटी वर्शिप करते हैं उनको ये जानना बहुत जरूरी है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी कौन है? मध्यम अधिकारी कौन है? वो भगवान की मूर्ति में भगवान को देखता है और उसी भगवान को भक्तों के हृदय में भी देखता है, जिसको वो पूजन कर रहा है उनको उसमें देख रहा है और उन्हीं को आपके हृदय में भी देख रहे हो, क्योंकि आप भगवान के भक्त हो तो आपको भी वो आपके अंदर भी उनका दर्शन करता है कि ये भी उनके ही भक्त हैं और आपका भी आदर करता है। पहला वाला जो है वो दूसरे का आदर नहीं करता है, भक्तों का भी नहीं करता है, केवल उनका आदर करता है बस। और उसके कई गुण बताए रूप गोस्वामी ने कि वो कैसे मैत्री करता है भक्तों से, नए लोगों से बहुत करुणा से बात करता है, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, हाँ भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, जूनियर लोगों से कृपा यानी करुणा से काम करता है और जो भगवान के भक्त हैं उनका संग टालता है, वो उपेक्षा करता है उसकी। ये मध्यम अधिकारी का लक्षण है। उत्तम अधिकारी कौन है? वो सबके अंदर भगवान को देखता है, वो अभक्त के अंदर भी भगवान को देखता है, यहाँ तक कि प्राणी मात्र के अंदर भगवान को देखता है, यहाँ तक कि जो निर्जीव है, जो जीव नहीं है, जैसे टेबल है, कुर्सी है, कण कण में भगवान को देखता है वो, उसके दृष्टि में सब जगह कृष्ण है। जैसे गोपियाँ थी, हाँ जब वो भगवान की विरह में थी तो उनको जमुना तट में भगवान, पेड़ पे भगवान, पत्ते पे भगवान, शाखा में भगवान, फूल में भगवान, जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ भगवान, क्यों? उनके अंदर भगवान है, दृष्टि में, विचार में, चेतना में भगवान है, तो उनको सब जगह भगवान दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ दिखाने पर भी भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि नामदेव जी को एक बार उनके पीछे ब्रह्म रक्षक लग गया तो क्या बोलता है, अरे भगवान आज इस रूप में आ गए, अभी तो मजाक छोड़ो। तो ब्रह्म रक्षक और तीव्र हो गया, बहुत भयंकर, ये जो 11 प्रकार के होते हैं ना भूत, उसमें 11वां प्रकार ब्रह्म रक्षस का होता है और सबसे अधिक भयंकर होता है, अतिशय सबसे भयंकर ब्रह्म रक्षस होता है। तो ब्रह्म रक्षस आपका जोर से प्रभाव दिखाने में लगा तो ये जोर से हंसने लगा नामदेव जी, कह रहे अरे भगवान आप ब्रह्म रक्षस बन के आ गए आज। तो आखिर में ऐसे वर्णन आता है, बहुत लंबा कथा है, वर्णन ऐसा आता है कि ब्रह्म रक्षस में से भी भगवान को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्म राक्षस को नष्ट करके उसके अंदर, क्योंकि हर एक जीव के अंदर परमात्मा होते हैं ना, चाहे भूत भी होगा तो भी भूत के साथ में भी सूक्ष्म देह होता है मन बुद्धि अहंकार का, उसमें भी परमात्मा निवास करते हैं, परमात्मा साथ देते हैं उसका भी, तो वो भूत का शरीर उध्वंस करके परमात्मा विट्ठल प्रकट हो गए उनमें से। मतलब भगवान को भी भक्त की जो चेतना है ना उसको शरण जाना पड़ा, ऐसी चेतना है उनकी, ये ब्रह्म राक्षस में भी भगवान को देख रहे हैं और भगवान को प्रकट होना पड़ा मजबूरन। तो उत्तम अधिकारी वो होता है वो निर्जीव वस्तु में भी भगवान का दर्शन करते हैं। और सभी चीज़ों का वैसा ही आदर करते हैं जैसे भगवान का कर रहे हैं, तो भगवान के भक्तों का कर रहे हैं। तो हमको क्या बनना है हमारे हाथ में, हमको जीवन भर कनिष्ठ बन के रहना है वो भी आपके हाथ में, कि मैं केवल जिनकी सेवा करने आ रहा हूँ उनको मानता हूँ, बाकी सब लोगों को किसकी परवाह नहीं करता, सबके साथ झगड़े करता हूँ, सबके साथ वाद विवाद करता हूँ, सबके साथ संघर्ष करता हूँ। हाँ वो क्या है ना, वो आप प्रभाव वो मेरा बना रहता है, और वो कभी कभी 20 साल 30 साल 25 साल जब करने पर बना रहता है, वही झगड़ालू स्वभाव, वही आप प्रभाव, ये मेरा वो मेरा नहीं है, वो मेरा दोस्त है ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा शत्रु है। ये तो प्रहलाद जी को शिक्षा दे रहे थे, वो संडा और अमरख सिखा रहे थे उनको, शत्रु कौन है मित्र कौन है, शत्रु को कैसे मार रहे हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं संडा अमरख को, आप मुझे कुछ शिक्षा दे रहे हैं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, सब लोग मेरे मित्र हैं, क्योंकि जब आप भगवान के भक्त बनते हो तो अपने आप सबके मित्र बन जाते हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको सबके साथ में मैत्री का अनुभव नहीं हो रहा है, यानी कि अभी तक भगवान के भक्त नहीं बने हम लोग। और भगवान से प्रेम करने के पहले हमें भगवान के भक्तों से प्रेम करना सीखना चाहिए, क्योंकि वो भगवान जो है ना, वो अभी भी हमारे साथ चलते बोलते नहीं ना, वो तो ऐसे ही खड़े हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। अभी हम लोग इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि भगवान हमसे बात करेंगे, आपको बताएंगे आज का श्रृंगार अच्छा किया आपने, लाल रंग मुझे बहुत पसंद है। ऐसा भगवान नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते आप वो केले की सब्जी बहुत अच्छी थी आज, वो कल वाली अच्छी नहीं थी आज बहुत अच्छी थी, ऐसा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है भगवान का। लेकिन वो जो महाप्रसाद खाता है वो जरूर बोलेगा आपको कि आज मीत नमक कम था, ये ज़्यादा तेल डाला था, उस नमक डालना ही भूल गए थे आप, बोल सकते हैं ना वो। तो आपको रिस्पॉन्स कौन देता है, सबसे पहले भगवान का भक्त देता है। अगर आपने ड्रेसिंग भी किया अच्छा है तो वो नहीं बोलते हैं, लेकिन आपके साथ वाले बोलेंगे बहुत अच्छा ड्रेसिंग किया आज। तो ऐसे कहते हैं कि जो आपके साथ चलते फूलते फिरते भक्त हैं उन पर आप प्रेम नहीं कर सकते हो, मैत्री नहीं कर सकते हो, तो भगवान पर क्या मैत्री करेंगे हम। इसलिए सबसे पहली चीज़ है भगवान पर प्रेम, अगर आपको है, अगर आप समझते हो या कोशिश कर रहे हो प्रेम करने की, तो उसका एक प्रमाण है कि उन पर जो प्रेम करने का आपके जैसा प्रयास कर रहे हैं उन पर पहला आप प्रेम करते हो। ये नहीं कि मैं ही केवल भगवान पर प्रेम करती हूँ, बाकी किसी को भगवान पर प्रेम नहीं। जैसा आप कोशिश कर रहे हो वैसे वो भी कोशिश कर रहे हैं भगवान पर प्रेम करने का, अपनी तरफ से अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन जैसे आप स्वयं का आदर करते हो कि मैं भी कुछ कोशिश कर रहे हूँ, वैसे ऐसे कोशिश करने वाले दूसरों पर आप प्रेम नहीं कर सकते, तो आप भगवान पर प्रेम भी नहीं कर सकते। और ऐसा प्रेम आप कोशिश कर रहे हैं भगवान पर करने का, वो भगवान स्वीकार भी नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आपके घर में मैं आया और आप पर मैंने प्रेम जताया, कुछ गिफ्ट दिया आपको, अच्छे शब्द बोले आपके लिए, कुछ स्तुति की आपकी मैंने, और आपके बच्चे को चिमटा निकाल के चला गया मैं, तो आप मेरे स्तुति गिफ्ट की परवाह करते हो क्या? अरे नहीं नहीं, उसने मेरे को इतना अच्छा साड़ी प्रेजेंट दिया, इतने इतने मेरे वचन बोले, मेरे पति भी नहीं बोलते ऐसे, वो बोल के गए मुझे, चलेगा क्या हुआ, बच्चे को चिमटा निकाल तो क्या बड़ी बात है, ऐसा आप बोलते हो क्या? नहीं बोलते आप, सर आप साड़ी वाड़ी सब गेट पे सब बाहर फेंक दोगे, और तुरंत बच्चे को चिमटा क्यों निकाला उसका जवाब पूछोगे मुझे। उसके उल्टे अगर मैं आपके घर पे आया और आपके बारे में कुछ नहीं बोला, मैं कुछ तारीफ नहीं किया, कुछ मीठे वचन नहीं बोले, कुछ गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन बच्चे को टॉफी दिया, बच्चे को खिलौना दिया, बच्चे को पापा लिया, बच्चे को बहुत प्रेम किया, बच्चा बहुत खुश हो गया, पापा बोल वहाँ के बोला मम्मी अंकल कितने अच्छे हैं, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस पर आप प्रेम करते हो उस पर किसी ने प्रेम किया तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। और भगवान भी ऐसे ही है, वो अगर देख रहे हैं कि मुझ पर जो प्रेम करते हैं इन पर ये लोग प्रेम करते हैं, उनका बुरा नहीं मानते हैं, उनको उनके साथ मैत्री करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनको हमेशा आदर करते हैं, तो भगवान उनकी आप नहीं आदर करेंगे तो भी आपको प्रेम करेंगे। क्योंकि मनुष्य को भगवान की प्रतिमा में बनाया गया है। मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हमारा आपका स्वभाव भगवान का मिलता जुलता है। कैसे? कि जिस पर हम प्रेम करते हैं उस पर कोई प्रेम करेगा तो उस पर भी हम प्रेम करते हैं। तो इसलिए अगर आपको सच रूप में भगवान का प्रेम चाहिए और आप सेवा करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उनकी सेवा जो कर रहे हैं उनका आदर और प्रेम करने को सीखना चाहिए। उनको तुच्छ मानकर हम भगवान को पसंद नहीं कर सकते। तुच्छ तो मानने की मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, वो भावना इधर होती है ना। किसी को हम तुच्छ मानते हैं तो रोज जाके बोलते नहीं हैं कि हम आपको तुच्छ मानते हैं। वो आपके इधर रहता है, अंदर रहता है और आपके व्यवहार में दिखाई पड़ता है कि आप उसकी परवाह नहीं करते हो, उसको देखते नहीं हो, उसको आदर नहीं करते हो, उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हो। ये आपके व्यवहार में दिखाई पड़ता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वो व्यवहार आपका जो है वो भगवान देख रहे हैं उसको, उसके भाव को भगवान देख रहे हैं कि आपका भाव क्या है। इसीलिए हृदय से जब हम भगवान के भक्तों का आदर करते हैं तो वो आदर भी आपके कृति से प्रकट होता है। कैसे आप बोल रहे हो, इनसे कैसे बोल रहे हो, इनसे कैसे बोल रहे हो, तुरंत देखने वालों को मालूम पड़ता है कि इनका कितना आदर है, इनका कितना आदर नहीं है। जिसका आदर कर रहे हो उसके बाद जब बोल रहे हो तो तुरंत आपका शरीर का जो लैंग्वेज है वो बदल जाता है। और जिनका आदर नहीं करते हो जब उनसे बात करते हो तो आपका बॉडी का लैंग्वेज देख के समझता है कि इनको आदर है कि नहीं। भले आप बोले कुछ नहीं है तो चलेगा, लेकिन आपके शरीर के हालचाल से पता चलता है कि आपको इस व्यक्ति से कितना आदर है। तो ये बातें हमको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने कोई बोला कि आपका रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, उसका उत्तर यही है। जब तक आप आपके साथ में सेवा करने वालों का आदर नहीं करते हो तब तक भगवान को पसंद नहीं कर सकते हो। अगर आप लीडर भी हो इस ग्रुप के, जब तक हर एक व्यक्ति के प्रति आपके मन में कृतज्ञता नहीं होगी, आदर नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, तब तक आपका लीडरशिप ही बेकार है। क्योंकि आपके जब मन में किसी के लिए चाहत, किसी के लिए नफरत होगी तो वो आपके व्यवहार में प्रकट हो जाती है। इसलिए भगवान कैसे होते हैं, आप कैसे होते हो, आपके घर में 5 बच्चे हैं तो आप भेदभाव नहीं करते हो 5 बच्चों में। एक बच्चा डब्बू है, एकदम शैतान है, मस्ती करता है बहुत, पेंसिल जबर चोरी करता है, रबर चोरी करता है, तंग करता है लोगों को। एक बहुत पढ़ने में अच्छा है, बहुत सिंसियर है, बहुत प्रामाणिक करता है, लेकिन अगर प्रेम का सवाल आया तो माँ दोनों से प्रेम करती है, भेदभाव करती है क्या? वो एक को केक देती है, एक को सूखी रोटी देती है, ऐसा करती है क्या? नहीं करती। तो वो भी बताएगा उस कॉन्फ्रेंस में कि अगर आप डॉक्टर हो तो आपके मरीज को आपको अपने बालक की तरह देखना चाहिए। गरीब हो या अमीर हो, बड़े घराने का पेशेंट हो या अमीर घराने का पेशेंट हो या गरीब घराने का पेशेंट हो, अगर आपके सामने पेशेंट बन के आया तो आपको उसको अपने बालक की तरह देखना चाहिए। इज़ माई चाइल्ड, इज़ नॉट वेल, उसको ठीक करना मेरा कर्तव्य है। नर्स के लिए भी ये कहा गया है कि वो माँ है पेशेंट की। पेशेंट चाहे 80 साल का हो और नर्स 20 साल की हो, लेकिन जब उसके बिस्तर पे वो आता है तो वो एक बालक की तरह उसकी सेवा करती है। परिचारिका यानी सातवीं माँ है वो। उसी तरह से हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि चाहे वो भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति अच्छा व्यवहार करने वाला हो, नहीं करने वाला हो, एडवांस हो, नहीं एडवांस हो, पुराना हो, नया हो, अच्छा काम करने वाला हो, नहीं करने वाला हो, अगर भगवान का नाम लेता है वो, सेवा में आ रहा है, कोशिश कर रहा है, तो उसके प्रति वो बेसिक स्थायी भाव आदर का हमारे मन में होना चाहिए। और अगर आपके मन में वो आदर है तो ही व्यवहार में आएगा वो। मन में आदर नहीं तो व्यवहार में नहीं आता है, वो नाटक नहीं कर सकते हम उसका। तो वो एक आदर होगा तो ही कृतज्ञता आएगी, थैंक यू का भाव आएगा कि थैंक यू वेरी मच, आप कुछ भगवान की सेवा में कर रहे हो। और कृतज्ञता जो है ना वो एक दूसरे के प्रति वो एक बहुत महान गुण है। कृतज्ञता होने पर अन्य सारी प्राप्तियां हो जाती है। अगर हम कृतज्ञ हैं हमको जो मिल रहा है उसके प्रति। आमतौर पर कलयुग में के लोग कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि ये नहीं है, रास्ते ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं मिल रहा है, बारिश नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, फलाना हो रहा है, जॉब में पैसा नहीं मिल रहा है, ट्रेन में इतनी गर्दी होती है, इतनी गर्मी होती है। इसका मतलब क्या है? वो ग्रेटफुल नहीं है जो उनको मिल रहा है, कंप्लेंट करते रहते हैं वो हर चीज़ के बारे में। ये क्या है, व्यवस्था अच्छी नहीं है, तनख्वाह अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, लाइट नहीं टाइम पे आती है, पानी नहीं मिल रहा है, ड्रेसेस अच्छे नहीं हैं, फलाना नहीं है, उधर मैनेजमेंट ठीक नहीं है। हाँ, ऐसे कंप्लेंट कब आती है? जब मन में हमारी कृतज्ञता नहीं होती है, जो हमको मिल रहा है उसके प्रति हम कृतज्ञ नहीं होते हैं तो कंप्लेंट करते रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति कब कंप्लेंट करना छोड़ सकता है? तभी कर सकता है वो जब वो कृतज्ञ हो कि मुझे वो मिल रहा है जिसके मैं योग्य नहीं हूँ। जब आपको ये भाव रहेगा ना मन में कि मुझे भगवान का नाम मिलने की मेरी कोई योग्यता नहीं है, कोई पुण्य नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी मुझे भगवान के नाम मिल रहा है, प्राप्त हुआ है और भगवान के भक्त का संग मिल रहा है मुझे, ये मेरी योग्यता नहीं है, भगवान की सेवा प्राप्त हो रही है जो मेरी योग्यता नहीं है। जब तक आपको ऐसा नहीं लगता है तब तक आप ना संतुष्ट हो सकते हो ना कृतज्ञ रह सकते हो। इसलिए भक्त की एक विशेष गुण है, भक्त का वो है कृतज्ञता। ही इज़ वेरी ग्रेटफुल, हमेशा वो कृतज्ञ रहता है, ऋणी भाव रहता है उसके मन में कि आई एम थैंकफुल कि मुझे मिल रहा है मौका। वो अपने आप को योग्य नहीं समझता है कि मैंने इतना साल मेहनत किया है, मुझे तो नंबर वन का सीट मिलना चाहिए, जब मैं सभा में आता हूँ तो लोग उठकर मुझे अपनी चेयर देना चाहिए, क्योंकि मैं 30 साल मेरे हो गए। जब तक वो ये समझता है कि मैं किस चीज़ के योग्य हूँ, वो उस चीज़ के लिए अयोग्य रहता है। जब वो उस चीज़ के लिए अपने आप को अयोग्य समझता है तब वो उसके लिए योग्य होता है। जैसे हमारे माधवानंद प्रभु हैं, वो कभी डायरेक्टर बनना नहीं चाहते थे, उनको बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, उनको ज़बरदस्ती बनाया गया ना चाहते हुए, ऑर्डर दिया गया कि आपको बनना है। तो उन्होंने पूछा कि ये करके मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी क्या? तो गुरु महाराज ने कहा यस, निश्चित रूप से प्राप्त होगी। उनको एक रुपये का इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर। ये भक्त की व्याख्या है। आमतौर पे दुनिया में सब लोग कोशिश करते हैं कि टॉप में पहुंचे, टॉप सीट मुझे मिले और ना योग्य होते हुए समझता है कि नहीं, मैं ही उसके लिए योग्य हूँ और इस जमाने में कोई योग्य नहीं है, आई एम द ओनली वन। मुझे कैसे नहीं पहचान पा रहे लोग कैसे नहीं पहचान पा रहे हैं, इतना मैं सामने बैठा हूँ, मुझे देखते नहीं क्या मैं कितना योग्य हूँ उसके? वो उसके लिए बिल्कुल अयोग्य होता है। जिसको लोग योग्य समझते हैं और वो खुद अपने आप को अयोग्य समझता है, वो सही रूप से योग्य होता है। इसलिए हमें अपने जो भी प्राप्त हो रहा है उसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए कि आई एम ग्रेटफुल। हो सकता है टॉप पोजीशन में मैं लाइफ में ना पहुंचूं, लेकिन भगवान उसी भावना को ग्रहण करते हैं क्योंकि वो भावग्राही जनार्दन है। वो आप कितना एक्सपर्ट तुरा भगवान को लगाते हो, कितना एक्सपर्ट माला और कॉम्बिनेशन लगाते हो, इससे प्रसन्न होते हैं वो? नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन उससे अधिक प्रसन्न किससे होते हैं कि आपका भाव क्या है, आपकी चेतना कैसी है। अगर आपने भगवान को बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन लगाया, बहुत सुंदर ड्रेसिंग किया और झगड़ा किया भक्तों से जाकर, तो उनको आपके कॉम्बिनेशन में कोई रुचि नहीं है। वो देख रहे कि मेरे भक्त से आप कैसा व्यवहार कर रहे हो। तो साथी लोग आपके हैं, उनसे आपका विवाद है, आपका झगड़ा है, आप सहयोग नहीं कर रहे हो, तो आपको उस भगवान को उस कॉम्बिनेशन में कोई रुचि नहीं है। ही हैज़ नो इंटरेस्ट कि आप कितने एक्सपर्ट ट्रेनिंग लेकर आए हो, उसमें भगवान को इंटरेस्ट नहीं है। भगवान को आपके ट्रेनिंग में और आपकी कला में तब आनंद आएगा जब आप साथ वाले भक्तों से प्रेम करते हुए, सहयोग करते हुए, आदर करते हुए उनकी सेवा करोगे। तो उसमें मिस्टेक भी होगी तभी वो उसको स्वीकार करेंगे। तो अल्टीमेटली ना, ये बड़ा एक रहस्य की बात है। देखा जाए तो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी है अगर नहीं है तो। हमको देखना ये कि आपका हमारा क्या कहते हैं उसको, फॉर्चून क्या है, भाग्य क्या है हमारा, कि हमारे साथ में 50 लोग ऐसे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के हेतु, निरपेक्ष भावना से आ रहे हैं। 15 साल से आ रहे हैं, 20 साल से आ रहे हैं। कोई उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई कूपन नहीं मिलता है, कोई किसी चीज़ का लाभ नहीं मिलता है, कोई सम्मान नहीं मिलता है, समझो। ये सब निरपेक्ष भावना से नियमित रूप से ठाकुर जी की सेवा में आ रहे हैं। कोई ड्रेसिंग में आ रहा है, कोई खाने बनाने में आ रहा है, कोई माला बनाने में आ रहा है। तो वो आपको देखकर बड़ा आनंद होना चाहिए कि ये तो आश्चर्य है, क्योंकि तो भौतिक दुनिया में कोई लाभ के बिना काम नहीं करता है, वो दुर्लभ चीज़ है ये। मतलब आपके साथ जो एकत्र जुड़ रहे हैं वो ऐसे दुर्लभ लोगों में से एक हैं। सारी दुनिया यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यही देखकर कोई काम करता है। पूरी दुनिया के अंदर मुझे क्या मिलेगा ये बिना सोचकर कोई काम नहीं करता है। शादियां भी होती हैं आजकल, तो मुझे क्या मिलेगा इसमें, वो देखकर शादी होती है आजकल। ये रिश्ते में मुझे क्या मिलेगा, वो पत्नी को लगेगा हाँ मुझे भी कुछ मिल रहा है, पति को लगेगा मुझे भी कुछ मिल रहा है, तो शादी हो जाती है। और आगे जाकर जब वो नहीं होता है तो डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि हेतु के बिना कोई काम ही नहीं करते कोई आजकल। कलयुग में खास करके बिना हेतु, बिना लाभ, बिना अपेक्षा कोई काम नहीं करता है। और ऐसा होते हुए भी, क्योंकि आप लोग देख जानते हो ना, आपके रिश्ते में, नाते में, फैमिली में सबको देख रहे हैं आप, रिश्ता ब्लड का होने पर भी कोई आपको हेल्प करने को नहीं आता है। ये कभी बार बार बोलने की जरूरत नहीं, सबको पता है ये। और हमको भी हमारे खून के रिश्ते से अधिक ज़्यादा विश्वास भक्तों पे होता है। कुछ कष्ट हुआ, कुछ लैटरिन हो गया, मोशन हो गया, बुखार आ गया, तो भक्त लोग ही खाना बना के लाते हैं और हेल्प करते हैं, पूछते हैं, और भाई बहन कोई देखने को नहीं आता है, ये सबको पता है। ऐसा सब अनुभव होने पर भी हम ऐसे लोगों को रेगुलरली मिलते हैं जो निरपेक्ष भावना से कुछ काम कर रहे हैं, तो ये आपका भाग्य है कि दुर्भाग्य, बताओ आप मुझे। बिल्कुल भाग्य है आपका ये। और ऐसे दुर्लभ लोगों से आपकी नियमित मुलाकात होती है, तो आपको खुशी होना चाहिए कि उनको देखकर गुस्सा आना चाहिए? तो ये भावना हम कर अगर हम स्वीकार करेंगे, तो भौतिक दुनिया में कोई भी काम करते हुए कभी भी बिना कष्ट का काम नहीं होता है। अभी हम लोग भक्ति वेदांत में काम कर रहे हैं हम लोग सब लोग, तो आप क्या बोलेंगे, सब भक्त है इधर, गुरु महाराज है इधर, सेवा भी गुरु जी की है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक हम भौतिक दुनिया में हैं प्रॉब्लम आएंगे आपको, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, जन्म होगा, मृत्यु होगा, दो व्यक्ति में संघर्ष होगा, गलत फहमी होगी, ये सब कुछ होगा। क्योंकि आप लोग सब लोग जो है, हम लोग सब लोग इस दुनिया में बैठे हैं जो कलयुग के प्रभाव में है। भौतिक दुनिया तो है नंबर वन, और सेकेंड कलयुग के प्रभाव में भी चल रहे हैं हम लोग। तो समस्या होना किसी घटना का बुरा या अच्छा मानने का कोई कारण नहीं है। समस्या उनके वजह से नहीं हो रही, समस्या काल के प्रभाव से हो रही है। तो भक्ति विधान में आप काम कर रहे हो फिर भी आपको, नौकरी कर रहे हो फिर भी आपको कष्ट होगा, क्योंकि दुनिया में जो प्रभाव चल रहा है कलयुग का, उससे आपको प्रभाव हो रहा है, उससे कष्ट हो रहा है। लेकिन हम क्या सोचेंगे, अरे दुनिया में सब लोग स्वार्थी रहते हैं, द्वेषी करने वाले होते हैं, लोभी होते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने पीछे आपके पीछे षड्यंत्र बना के आपका नुकसान कर सकते हो। लेकिन ऐसे लोग हमारे पास नहीं है। सब लोग भगवान का नाम लेते हैं, कोई मांस नहीं खाते हैं, कोई व्यभिचार नहीं करते हैं, कोई जुआ नहीं खेलते हैं, कोई नशा नहीं करते हैं। लोग भगवान का नाम लेकर आते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, सिंसियर हैं। मैं जानता हूँ आज झगड़ा हुआ लेकिन संकट होगा तो वही भाग के आएंगे। तो हम लोग जब भी वाद होता है, कुछ मतभेद होता है, तो ये सोचते हैं कि इनकी स्थिति का लाभ क्या है हमको। चलो आज भी भक्ति विधान बहुत हो गया, अभी मैं रिजाइन करके और कई काम करूँगा। लेकिन वहाँ जाकर आपको उससे 100 गुना अधिक तकलीफ होगी, जो आज आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यहाँ पर गुस्सा आ रहे जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो आप बोलेंगे अरे तो अच्छा था बहुत, फिर भी ठीक था, ऐसे वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ेगा। वैसे जब तक हम लोग भक्तों को बीच में रहते हैं, हमको लगेगा कि क्या ये भक्त है क्या, इससे अच्छे बाहर के लोग अच्छे। ऐसे कितनी बार सुना है मैंने आज तक, कितनी बार सुना है कि ऐसा भक्त बनने के बदले में कर्मी होना अच्छा है। लेकिन ये बात सच नहीं है, अनंत दुर्गुण होने के बाद भी ये सच नहीं है। क्योंकि भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति जो है ना, वो हर दुर्गुण के साथ महान होता है। हर दुर्गुण होने पर भी वो महान होता है। उसका संग प्राप्त करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं जो भगवान का नाम लेता है। सारे देवता उसके शरीर में निवास करने का प्रयास करते हैं, उसके अंग संग लेना चाहते हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेता है। लेकिन जब कोई वाद होता है, कोई झगड़ा होता है, तब ये सब बातें भूल जाते हैं। वी फॉरगेट एवरीथिंग सिवाय उस बात के जिस बात पर झगड़ा हुआ है। तो मुझे यहाँ पर एक और कथा याद आती है, वो है दशरथ महाराज की। सब लोग सुन रहे हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे अभी हम जो कथा हो रही है, समझा आप में से नींद आ रही है तो मुझे लगेगा क्या है ये लोग, कथा में भी सोते हैं। लेकिन उसको देखने का और एक तरीका भी है कि नींद आ रहे हैं फिर भी कथा में बैठे हैं, छोड़ के नहीं जा रहे, समझे आप। बात तो वही है लेकिन सोचने का तरीका अलग है। समझो लोग कथा में आते हैं और सो जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि कम से कम कथा में तो आए तो है ना, कम से कम, बाकी लोग तो आए भी नहीं है, जो टीवी देख रहे हैं घर बैठ के, अच्छी तरह जग रहे हैं, सोए भी नहीं हैं लेकिन टीवी देखते हुए जग रहे हैं, और ये व्यक्ति कथा सुनते हुए सो रहा है, दोनों में से अच्छा कौन है? दोनों बेकार हैं। ऐसा नहीं है। तो ये दृष्टि जो है ना ये बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। तो भगवान ने आपको जगाने के लिए कुछ व्यवस्था किया अभी। दशरथ महाराज ये कथा ध्यान से सुनना, आपको बहुत आनंद आएगा सुन के, और आप इसको दोहरा सकते हैं किसी के लिए, उस भाव से आप सुनिए कि किसी को पता नहीं आपको ये कहानी। दशरथ महाराज इतने श्रेष्ठ राजा थे, इतने श्रेष्ठ मतलब संत थे एक दृष्टि से, कि उनके राज्य पर उनके प्रभाव के वजह से कभी शनि का काल नहीं आया। शनि होता है ना, उसका काल सबके जीवन में आता है, कोई टाल नहीं सकता है उसको, उसका एक चक्र है, वो चक्र में उसका काल आना ही है। वो आप चाहे प्रधानमंत्री हो या बिल गेट्स के बच्चे हो या तो और किसी के बच्चे होंगे, वो शनि का काल आपके जीवन में आएगा। सब धन वन सब होते हुए भी आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ऐसा होने पर भी दशरथ महाराज के शुद्धि और पवित्रता और उनका भक्ति भाव के वजह से उनके राज्य पर, उन पर नहीं कह रहा हूं मैं, उनकी बात तो अलग रही, उनके राज्य पर अयोध्या पर भी शनि का काल कभी नहीं आया, शनि हमेशा आदर से दूर रहे। कई साल ऐसे बीते, ऐसे भी कहा गया कि शनि के काल उनके दशरथ जी के राज्य में उन्होंने इतना सुंदर व्यवस्था किया था कि कई साल अकाल बकाल वर्षा ही नहीं हुई, लेकिन राज्य के किसी व्यक्ति को पता ही नहीं चला कि वर्षा हुई नहीं, इतना अच्छा पानी का व्यवस्थापन दशरथ महाराज का था, वाटर मैनेजमेंट इतना सुंदर था। एनीवे मैं आपको उनका एक महानता बताया। तो लेकिन बहुत साल बीतने के बाद में शनि महाराज को लगा कि अभी तो बहुत हो गया, अभी तो मैंने बहुत इनका आदर किया, लेकिन मेरा ड्यूटी भी करना चाहिए मुझे। तो वो शनि महाराज निकले अयोध्या जी पर अपना प्रभाव जमाने के लिए। क्या बोलते हैं उसको? हरे कृष्णा, माता जी को बोलो क्या बोलते हैं, सरस्वती, ऐसा बोलते हैं ना कुछ महादशा ये वगैरह। वैसा काल शुरू होने का समय आया तो दशरथ महाराज को पता चला कि अभी ऐसे हो रहा है, तो वो सेना लेकर निकले, मैं युद्ध करूंगा शनि से और मेरे राज्य पर उनका प्रभाव नहीं होने दूंगा। तो शनि और दशरथ में घनघोर युद्ध हुआ, बहुत घनघोर युद्ध हुआ। वो ऐसा नहीं कि वो खंडक में छुपकर बॉम्ब फेंक रहे हैं, फिर बाहर आके फिर गोली मारी, फिर अंदर छुप रहे हैं, ऐसा नहीं। आमने सामने दो महावीर, एक पृथ्वी का और एक देवता के समान, उनका घनघोर युद्ध आकाश में होने लगा, अवकाश में युद्ध होने लगा, स्पेस में। इतना सुंदर युद्ध, भयंकर युद्ध हुआ कि सारे देवता लोग इकट्ठा हो गए देखने के लिए। जैसे अर्जुन और भीष्मदेव का युद्ध हो रहा था, सब युद्ध रुक गया वो देखने के लिए, युद्ध करते हुए रुक गए वो देखने के लिए कि इतना बड़ा युद्ध हो रहा है। तो उसमें शनि ने एक ऐसा अस्त्र मारा कि दशरथ जी बेहोश हो गए, और बेहोश होकर अपने आकाश वाले रथ से नीचे गिरने लगे पृथ्वी पर। उस समय झट से जटायु वहां पर आए और उन्होंने अपने पंख फैलाकर गिरते हुए दशरथ को पकड़ा। जिस गति से दशरथ जी नीचे गिर रहे थे गुरुत्वाकर्षण के बल से, उससे भी अधिक गति से जाकर नीचे जाकर उन्होंने उनको पकड़ा और फिर इत्मीनान से नीचे लेके आए, उनका शुश्रूषा किया, उनको होश में लाया, उनका सेवा किया। जैसे ही वो होश में आए तो एकदम उठे, कहाँ है दशरथ महाराज, इधर क्यों लेके आए मुझे आप, ऐसा चिल्लाने लगे। वो तो बेहोश हो गए थे ना, उनको पता नहीं था, तो तुरंत बैठकर वापस ऊपर चले गए वो, और शनि के सामने खड़े हो गए। और सावधान करके उनको ललकारा उन्होंने। शनि को इतना अच्छा लगा, अरे मेरे वार से बेहोश होकर भी दोबारा उठकर ललकारने की किसी में हिम्मत हो सकती है, तो उधर ही युद्ध रोक लिया उसने। बोला कोई बात नहीं, आपके राज्य में नहीं आएंगे, बड़े प्रभावी आपसे। यही भाव देखकर रुक गए, वो युद्ध आगे बढ़ाया नहीं उसने ललकारने के बाद भी, तो शनि प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन दशरथ महाराज जटायु के प्रति बड़े ऋणी थे, कृतज्ञ थे। क्यों? ऐसे मौके पर उन्होंने उनको बचाया था। वो खड़े कैसे हो गए ललकारने के लिए, अगर उसने पकड़ा नहीं था उनको, अगर सेवा नहीं की होती उनकी, शुश्रूषा नहीं की होती, तो कैसे खड़े होते ललकारने के लिए, सावधान शनि को बोलने के लिए। तो उन्होंने जटायु को वादा किया कि जब मुझे बालक होगा तो सबसे पहला बालक मैं आपको दूंगा। तब बालक नहीं था उनको, दशरथ जी को तब पुत्र नहीं हुए थे, जवान थे वो। बड़ी देर बाद जैसे वसुदेव को, नंद महाराज को, वृषभानु महाराज को बड़े देर से पुत्र प्राप्ति हुई, संतान प्राप्ति हुई है। दशरथ को भी बड़ी देर से प्राप्ति हुई थी। फिर पुत्र कामिष्टि यज्ञ हुआ, पुत्र काम इष्ट यानी कि पुत्र की इच्छा से जो यज्ञ किया गया। वो एक जंगल में ऐसा एक ऋषि था, उसका नाम क्या था भूल गया उसका नाम मैं। उस व्यक्ति ने कभी भी किसी स्त्री को देखा नहीं था, उसके पिताजी ने उसको ऐसा रखा था कि उसको किसी भी स्त्री का दर्शन नहीं होना चाहिए। तो उसी का नाम दिया गया कि उसके हाथ से अगर यज्ञ करेंगे तो दशरथ महाराज को पुत्र होगा। तो रामायण में कथा आती है उसको, तो कुछ सुंदर स्त्रियों को भेजा गया, वो ऋषि के आश्रम के पास वो डेरा जमा दिया, और स्त्रियों ने पुरुष का वेश धारण किया। और ये जब फल बिनने जाता था ना, तभी उनको मिले वो, तो उसको लगा कि ये कुछ अजीब प्रकार के पुरुष लगते हैं, ये कुछ डिफरेंट है, ये बहुत स्वीट है, बहुत अट्रैक्टिव है, इनकी आवाज़ भी बहुत डिफरेंट है। उन्होंने उनको शरीर पुरुष के वेश में गले लगाया, उनको बहुत प्रेम दिया, फल खिलाए, और वो कंदमूल खाने वाला था ऋषि, ऋषि बालक, लेकिन उसको पकवान दिया, मतलब जो पकाया हुआ अन्न दिया, वो स्वीट्स खिलाया उसको, फ्राइड फूड खिलाया। तो उसके बाद इनके पास अन्न भी कुछ अलग प्रकार का है, मैं तो खाली फल और मूल और खाता हूँ। तो बड़ा प्रभावित किया उनको, उन्होंने कहा कि ये तो शुरू, हम तो पिकनिक में आए हैं, तो पिकनिक में क्या क्या लेके आ सकते हैं, अरे हमारे रसोई में आ गए तो और मिलेगा आपको। तो उसको लेके गए राजा के दरबार में, और फिर उसको समझ में आया कि कोई स्त्री नाम का भी व्यक्ति होता है, मतलब इस दुनिया में। फिर उसका विवाह करते हैं वो, और वो जो ऋषि है उसके हाथ से दशरथ का पुत्र कामिष्टि यज्ञ करते हैं, और उसके बाद में दशरथ महाराज को खीर प्राप्त होती है। और वो चार दो विभाग में पहले डिवाइड करते हैं उसको, एक कौशल्या और एक कैकेयी, हाफ हाफ, पर अपने में से एक एक हिस्सा निकाल के वो सुमित्रा को देते हैं। वो चार पुत्र होते हैं, है ना, एक एक पुत्र रामचंद्र भगवान, और उनके हिस्से से बना हुआ जो है वो लक्ष्मण जी, और दूसरे कैकेयी से भरत होते हैं, उनके हिस्से से बने हुए शत्रुघ्न, इसलिए उनका प्रेम होता है, एक ही हिस्से से हुए। अभी कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही पुत्र की प्राप्ति होती है, ये जो कथा है ये किसी को उसने बताई नहीं थी आज तक, कि मैंने जटायु को वादा किया है कि मेरा प्रथम पुत्र मैं उसको समर्पित करूंगा। वो बड़ी बड़ी कमिटमेंट है ये, हाँ, ऐसा नहीं कि मैं जब बच्चा होगा तो आपको 101 रुपये दूंगा आपको घर में खाने को बुलाऊंगा, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, हज़ारों लोग खाना खाएंगे तो आप भी खाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। मेरी बेटी की शादी में आपको दक्षिणा दूंगा, ठीक है, बहुत लोग दक्षिणा देते रहेंगे, आप आपको भी दे देंगे, लेकिन मेरा बड़ा पुत्र जो है, ज्येष्ठ पुत्र, वो आपको दूंगा, इट्स अ बिग थिंग। और ये किसको उन्होंने बताया नहीं है। और जैसे ही जन्म होता है सब खुशियां मना रहे हैं, हाँ, सबके अंतपुर में आनंद मनाया जा रहा है, और अचानक ही कौशल्या के दरबार में आते हैं, मतलब अंतपुर में आते हैं, प्रभु रामचंद्र को उठाते हैं, वो चले जाते हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, अरे इतने समय बाद में पुत्र हुआ है, इतनी खुशियां मनाई जा रही, इतनी शुभ घड़ी है, दशरथ बिना बोले बड़े पुत्र को उठाकर चले गए। तो सब लोग उनके पीछे पीछे आते हैं, तो उनको ना अयोध्या के सीमा के ऊपर एक बड़ा गीदड़ दिखाई पड़ते हैं। बोले इतनी शुभ घड़ी पर गीदड़ का दर्शन कितना बुरा होता है, है ना, गीदड़ कब देखते हैं हम लोग, जब किसी की मृत्यु होने वाली है तो गीदड़ आता है और गिद्ध का दर्शन बहुत अशुभ माना गया है, और ऐसे शुभ घड़ी पर शादी हो रही है, किसका जन्म हुआ है, किसका पवित्र उत्सव है, उस समय गिदड़ बैठा, वो भी कैसा गिदड़ जिसका सर जो है वो बादल में है, इतना बड़ा है वो, इतना विशाल गिदड़, सामान्य गिदड़ भी नहीं। तो उनको लगे कैसे अशुभ घड़ी है, और क्या देख रहे हैं कि ये उसी की ओर जा रहे हैं बिना कुछ बोले, प्रभु राम को लेके जा रहे हैं, और जाके सीधा उसको वो अर्पण करते हैं, जैसे मैंने कहा था मैं लेने आया हूँ। तो वो जटायु कहते हैं कि अरे मैं तो जटायु हूँ, मतलब मैं गिदड़ हूँ, मुझे मनुष्य के बालक का लालन पालन करना पता नहीं कैसे है, आई डोंट नो हाउ टू रेज ह्यूमन चाइल्ड, तो आप इस मेरे बालक को आपके पास ही रखिए, और ये बड़ा हो जाएगा तो मुझे दे देना बाद में, आई वॉन्ट रेडीमेड प्रोडक्ट। तो वापस लेके आते हैं, वापस लेने के बाद में सब कथा बताते हैं कि मैं क्यों गया था। अभी ये कथा मैंने आपको यहाँ क्यों बताया, अरे वचन दिया उसने किसी समय पर, भावना में दिया होगा, सोच समझ के दिया होगा, दिमाग से दिया होगा, हाँ मजबूरी में दिया होगा, कुछ भी बोलो, वचन दिया है। रघुकुल की वो रीत चली आई, जान जाई पर वचन न जाई, मरेगा आदमी वो लेकिन वचन को निभाएगा, वो सुविधा देखेगा फिर वचन को पूरा करेगा, सुविधा नहीं होगी तो नहीं पूरा करेगा, ऐसा नहीं होता है, वो कंडीशन में नहीं होता है, वचन दिया है तो पूरा करना है। तो ये सारे ये जो वचन निभाने का गुण है ना, वो केवल इंसान का गुण है, कोई प्राणी इसको निभाता नहीं है, प्राणी केवल इंद्रियों के जितना वेग है ना उस पर काम करता है। श्रील प्रभुपाद की जय। प्राणी जो है वो केवल इंद्रियों का जो वेग है उस पर काम करता है, वो कोई निश्चय नहीं उसके अंदर, वो कोई वचन पालने का नहीं, कोई आदर वगैरह कुछ नहीं रहता उसके अंदर, इंद्रिय भोग एक ही बात है उसका। लेकिन अगर मनुष्य कहलाते हैं तो मनुष्य के लिए कई गुणों का वर्णन किया गया है, और मनुष्य की श्रेष्ठता इन गुणों से होती है। तो वो हमको उस पर कथा में क्या सीखना है कि विपरीत स्थिति होने पर भी जो हम वचन देते हैं किसी को, शब्द देते हैं, उसको पूरा करना बहुत जरूरी है, तब जाकर इंसान की एक अहमियत होती है, एक सम्मान होता है उसका, एक उसके व्यक्तित्व में चार चांद लग जाते हैं, जो समय पर आता है, जो कहे हुए वचन को निभाता है, उसका सब लोग आदर करते हैं, क्योंकि सब लोग नहीं कर पाते हैं सब कुछ इसको। उसको दूसरे वाक्य में कहा जाए तो कमिटमेंट कहते हैं उसको, कमिटमेंट मतलब मैंने कमिटमेंट दे दिया है कि मैं आज से विवाह करूंगी। साक्षी गोपाल की कथा में क्या आता है, ब्राह्मण ने वो बालक को कमिटमेंट दे दिया कि आपने मेरी तीर्थयात्रा में इतनी बड़ी सेवा की, मैं मेरी कन्या को आपसे विवाह में दे दूंगा। वो इतना भावुक हो गया था उस समय, जब घर गया तो उसके बहू ने, मतलब उसकी बीवी ने, उसके बाल अन्य लड़कों ने मजाक उड़ाया उसका, क्या पागल हो गए पापा, कौन लड़का था, जाति क्या थी उसकी, कहाँ से आया था कोई पता नहीं, सीधे अपनी मेरी बहन को आपके उनको देने का वादा कर दिया आपने, उसको बोलेंगे जाओ साक्षी को लेके आओ फिर देंगे, ऐसा मजाक उड़ाया उसका पूरा। तो ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ, ब्राह्मण तो ऐसा नहीं था, उसको अपना वादा निभाना था, लेकिन उसको वादा निभाने नहीं दिया, फिर भगवान से प्रार्थना किया उसने, और आखिर भगवान आए, और बालक के भी भाव को देखकर और ब्राह्मण के भाव को देखकर भगवान स्वयं चल के आए। तो अगर आपको अपने वादा निभाने की इच्छा होगी तो भगवान भी सहायता करते हैं उसके अंदर, कहने का मतलब ये है, अगर आप अगर तुले हुए हो कि मैंने वचन दिया है, मैंने शब्द दिया है, मेरा कमिटमेंट है, तो भगवान भी आपकी सहायता करते हैं। और जो व्यक्ति नहीं करना चाहता है उसके लिए 50 बहाने भी मिल जाते हैं कि कैसे मैं नहीं कर सका, आप क्या जानते हो मेरी स्थिति क्या थी। तो भगवान की सेवा ना एक कमिटमेंट है हमारे लाइफ का, हमारे लाइफ में अगर हम भगवान की सेवा का कमिटमेंट लेते हैं तो भगवान उसको कभी भूलते नहीं हैं, कभी भी नहीं भूलते हैं। जो उनकी सेवा में कमिटमेंट देता है उससे बड़ा आदमी कौन हो सकता है, वो सबके नज़र में एक विश्वासु व्यक्ति होता है कि ये व्यक्ति ने अगर जबान दे दिया तो ये आएगा और जो बताया हुआ है वो काम करेगा, चाहे स्थिति कितनी प्रतिकूल हो, संकटमय हो, कष्ट वाली हो, इसने अगर जवान दिया है तो वो हो जाएगा। ऐसा विश्वास किसी के मन में पैदा करना ये बहुत बड़ी प्राप्ति है जीवन की, किसी भी व्यक्ति के मन में ऐसा विश्वास प्राप्त करना कि अगर मुझे कहा गया है या इसको कहा गया है तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा, ये हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, कमिटमेंट, उत्तरदायित्व हमारा ये। और इन बातों से हम भगवान को बहुत अच्छी तरह से और आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज हमने दो तीन बातों का चर्चा किया। एक है हमारे साथ आने वाले लोगों का उचित तरह आदर करना, जैसे हम भगवान का आदर करते हैं। अपने आप को भाग्यवान समझना कि हमको ऐसे लोगों का जो निरपेक्ष है, निस्वार्थ है, किसी हेतु के बिना आ रहे हैं, ऐसा लोगों का संग मिल रहा है। भले कोई छोटी सेवा करे, कोई बड़ी सेवा करे, लेकिन ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं। और अगर मैं भगवान के ऊपर प्रेम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो पहले भगवान की सेवा करने वाले सेवायत लोगों को प्रेम करना सीखना चाहिए। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात हो गई कमिटमेंट की, कि अगर मैंने कुछ वचन दिया है तो मैं वचन किसी माताजी को नहीं दे रहा हूँ, मैं भगवान को दे रहा हूँ वचन कि मैं आऊँगा आपकी सेवा में, शनिवार को आऊँगा, गुरुवार को आऊँगा मैं। आपको लग रहा है कि आपने फलाना माताजी को वचन दिया है तो क्या हो गया उसकी बड़ी बात, मैं तोड़ दूंगा उसको, वो कौन बड़ी माताजी है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन आप जब किसी बात का वचन देते हो तो भगवान को वचन दे रहे हो कि मैं आऊँगी आपकी सेवा में। और अल्टीमेटली आसान समय में सब लोग सेवा भी कर लेते हैं, लेकिन कठिन समय पे सेवा करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे रामचरित प्रभु बरसाना यात्रा में जाने वाले थे, बहुत उत्साह में थे, लेकिन हमने उनको कहा कि कुसुम सरोवर पे बहुत सेवा की ज़रूरत है, आपको वहाँ डेढ़ महीना रहना है। तो पहले पहले प्रभु जी मुझे बरसाना है कैंप में जाना था, तो मैंने कहा बरसाना है कैंप में बहुत आनंद है, 300-400 भक्त आने वाले हैं, बहुत कथा होगी, सेवा होगी, बहुत कीर्तन होगा, बहुत अच्छा वातावरण होगा। मैंने कहा आनंद होगा ज़रूर, लेकिन ज़रूरत सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पर 300-400 लोग सेवा करेंगे, वहाँ अगर एक भी नहीं है तो तैयार हो गए वो जाने के लिए। तो भगवान उस भाव को देखते हैं कि आप अपने खुद के निजी आनंद को भी छोड़ने को तैयार है अगर आपको सेवा के लिए ज़रूरत है। मतलब सेवा में से मुझे हर टाइम आनंद मिलना ही चाहिए, खुशी और लड्डू और पकौड़ा मिलना ही चाहिए, ये भाव नहीं है। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर मुझे ज़्यादा खुशी नहीं मिल सकती है, लेकिन ज़रूरत वहाँ पर है, वहाँ पर मैं जाऊँगा। घर में भी कैसा रहता है, समझो अभी घर में शादी है समझो, और घर में एक कोई बुढ़ा व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, अभी सबको शादी में जाना है तो उसके लिए कौन रहेगा घर पे? तो एक व्यक्ति बोलेगा आप सब जाओ मैं रहूँगी। शादी में किसको जाने को अच्छा लगता है, घर की शादी है, हाँ लड्डू मिलेंगे, मलाई मलाई मिलेगी, सब लोग नाचेंगे कूदेंगे, बहुत मज़ा आएगा उधर। उसमें एक व्यक्ति बोलता है आप सब लोग चिंता मत करो, मैं वो लेडीज़ के रूम में जहाँ पर सब जेवर रखे हुए हैं, जब सामान रखा हुआ है, बैग रखे हुए हैं, सबके चेंज करने कपड़े रखे हुए हैं, महंगे महंगे कपड़े, मैं वहाँ बैठूंगी और उसकी देखभाल करूँगी, आप चिंता मत करना, आप इन्जॉय करना, मैं वहाँ बैठूंगी सबका निगरानी करूँगी। कितना बड़ा त्याग है, उसको भी आना है उधर देखने के, मज़ा इतना रौनक आ रही है तो मैं जाऊँगी देखने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति बोल रही है आप चिंता मत करना, मैं यहाँ कुर्सी पर बैठी रहूँगी। जिसका सामान, कोई सूट चेंज किया, फिर साड़ी चेंज किया, वो सबका कपड़ा महंगा महंगा महंगा, वो सब मैं संभाल के ध्यान रखूँगी उसके ऊपर, खाली मेरे को नाश्ता टाइम पे भेज देना, बस मैं पेशेंट हूँ डायबिटीज़ का, मुझे भेज देना वहाँ पर मैं बैठूँगी। तो हम याद किसको करते शादी में करते हैं कि वो व्यक्ति ने अपना खुशी छोड़कर वहाँ बैठा। उस तरह से भगवान भी किसको याद करते हैं कि सब कुछ खुद का मजा छोड़कर वो मेरी सेवा में रह गया उधर। तो भगवान की नजर से सबसे अधिक कृपा उस पर होती है, उसको उस समय लड्डू नहीं मिलेगा या ये मेवा नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान की कृपा जरूर मिलेगी उसको। क्योंकि तो भगवान क्या देखते हैं, आसान समय पर सब लोग सेवा करने को आगे रहते हैं, लेकिन जब डिफिकल्ट समय आता है और चैलेंज आता है, चैलेंज चुनौती आती है, तब तो जो सही रूप, जिनकी भावना सही है, वो आगे आ जाते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि ऐश्वर्य और यश के समय आपके साथ कितने लोग हैं, इस पर आप जज नहीं सकते कि आपके दोस्त कौन हैं। आपके दोस्त कौन हैं आपको तब समझ में आएगा जब संकट में होंगे आप। आज आपके साथ में कितने लोग हैं उस पर आप ये गिनती नहीं कर सकते कि मेरे कितने मित्र हैं। जब आप संकट में आएंगे तो आपके साथ कितने लोग हैं तब आपको पहचान होगी कि ये मेरा सही मित्र है। अभी आज उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, कष्ट ही मिलेगा मुझसे, लेकिन वो आज खड़ा है क्योंकि मुझ पर प्रेम करता है। भगवान भी जानते हैं, अगर सब जगह लोग सब लोग जा रहे हैं, एनुअल डे है या फेस्टिवल है, सब जा रहे हैं, लेकिन अगर यात्रा है और सब लोग यात्रा में जा रहे हैं, भगवान की सभा में कोई नहीं है, तो दो व्यक्ति ने कमिटमेंट किया था वो नियमित रूप से चार लोगों का काम करने को आ रहे हैं। भगवान भी देखते हैं उनको, ये कठिन समय है, आसान समय नहीं है, लेकिन उस समय पर ये व्यक्ति मेरी सेवा में जो वादा किया था वो पूरा करने के लिए आ रहे हैं। रात को हमारे कैंप में कुछ चीज़ बिगड़ती है, सब लोग सो रहे हैं, लेकिन जो कमिटमेंट वाले लोग हैं ना, वो दो लोग उठेंगे और रात भर जगेंगे और उसको रिपेयरिंग करेंगे, और दिन में भी बाद में काम करेंगे, वो पता भी चलेगा ना आपको कौन जगह जगा था, कौन सोया था, रात में क्या हुआ था। जैसे आप सब लोग माँ हो, आपका कभी बालक छोटा होगा और सो रहा होगा, और समझो गांव में बिच्छू आया होगा, तो माँ रात को उठती है, वो बिच्छू को पकड़ के दूर करके फेंक देती है, बच्चे को उसमें जगाती नहीं है, हे बच्चा पता है क्या तेरे लिए मैंने क्या किया, बिच्छू आया था तू तो सो रहा था, मैंने उसको तुमको बिच्छू से बचाया, ऐसा बोलते क्या वो, फिर बोलती भी नहीं, बच्चा आराम से सो रहा है, उसको पता नहीं बिच्छू आया कि सांप आया कि मच्छर आया कि कोई और कीट गया। ऐसा जो काम करते हैं उनका काम भगवान देखते हैं, चाहे किसी को पता नहीं होगा कि ये माँ ने कितने बिच्छू हटाए होंगे रात को, कितने सांप को दूर किया होगा, बालक को अच्छी नींद मिलनी चाहिए इसलिए, क्या रिकॉर्ड नहीं किया उसका, क्या हस्बैंड ने या भाई ने या किसी दादा ने उसका रिकॉर्ड करके सत्कार नहीं किया उसका। वो जो सेवा होती है ना, उसको भगवान ऐसा रिवॉर्ड देते हैं, ऐसा बख्शिश देते हैं, अच्छा पारितोषिक देते हैं, तो हमको उनमें से बनना चाहिए। वो लोग गुरु महाराज को, संतों को, भगवान को बड़े प्रिय हो जाते हैं। शास्त्र में ऐसी कितनी कहानियां हैं जो भगवान को प्रसन्न करने वाली बातें जो हैं, वो गिने चुने लोग होते हैं जो अपनी कमिटमेंट इस तरह से देते हैं। तो हम लोगों को, मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोगों को ये मौका है भगवान के सामने अपने आप को साबित करने का, भगवान का दिल जीतने का, भगवान को प्रसन्न करने का, हमारे पास एक सुनहरा मौका है। छोटे पैमाने पर क्यों न हो, हमारे मंदिर में अगर कोई सेवा करता है तो उसका वो वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम नहीं आता है, लिम्का रिकॉर्ड्स, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम नहीं आएगा आपका, लेकिन भगवान की किताब में ज़रूर आपका नाम रहेगा, है ना। तो मैं आपके लिए, सबके लिए बहुत मैं ऋणी हूँ, क्योंकि मैं हर समय, जब आज भी, कल भी, परसों भी, जब मैं जगन्नाथ के मंदिर जाता हूँ नीचे हमारे, जो दर्शन करता हूँ, तो मुझे इतना आनंद आता है उसको, उनको देखकर, और उनको देखकर ये पता चलता है कि इनकी सेवा बहुत बढ़िया हो रही है। आप किसी महाराज को मिलेंगे ना, किसी सन्यासी को, वो दुनिया भर घूमते रहते हैं, सब विग्रहों का दर्शन करते हैं, और किन विग्रहों का सेवा अच्छी हो रही है, किन की नहीं हो रही है, किन को कौन से विग्रहों को निग्लेक्ट किया जा रहा है, कौन से विग्रहों को ध्यानपूर्वक सेवा की जा रही है, ये वो सन्यासी लोग, भक्त लोग बड़ा और पहचानते हैं, उनको देखकर ही समझते हैं कि इनकी सेवा बढ़िया हो रही है। और हमारे लिए आज भी एक आश्चर्य बात है कि 20 साल हॉस्पिटल को होने आएंगे, हो जाएंगे अभी, 18 साल हो गए हैं, कि इतने साल से हमारे जगन्नाथ की, भगवान की सेवा निस्वार्थ लोग कर रहे हैं, एक रुपये की तनख्वाह हमने किसको दी नहीं है आज तक, और आप सब लोग निरपेक्ष भावना से, भगवान के प्रेम की वजह से सेवा करने को आ रहे हैं, और भगवान को एकदम, क्या कहते हैं हमारी भाषा में, क्या बोलते हैं, चकाचक रखा है भगवान को एकदम बुजुर्ग लोग कहते हैं चक रखा है, मतलब एकदम शाइनिंग, हाँ, उनको देख के पता चलता है। जब हमारे गुरुदेव मंदिर में आते हैं, जब कोई सन्यासी आते हैं, प्रभुपाद के शिष्य आते हैं, तो देखते हैं मंदिर को, देखकर उनको पता चलता है कि वाइब्रेंट मंदिर है ये, हाँ, ऐसा कोई डल, ऐसा जो कोई अटेंशन नहीं जिसका, ऐसा नहीं है। और आप लोग कहीं भी सामने रहते ना उस समय कि हाँ ये माता जी लोग सेवा करते हैं, मतलब आप पर्दे के पीछे रहकर सेवा कर रहे हो, और जो परिणाम है उसको लोग देख रहे हैं, और वो उनको देखकर उनको वो जो अनुभूति हो रही है वो दिव्य अनुभूति होती है, क्योंकि भगवान के विग्रहों की जब सेवा होती है, जैसे आप यहाँ पर आए, आपको पता नहीं यहाँ पर पुजारी तो कौन है, आज श्रृंगार किसने किया, कल किसने किया था, परसों किसने किया था, खरीदी किसने की थी, पीस किसने लेके आए थे, ड्रेस किसने बनवाया, आपको कुछ पता नहीं, आपको क्या दिख रहा है, भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं, एकदम फ्रेश लग रहे हैं, मतलब एक टीम उसके पीछे है, छोटी है या बड़ी है पता नहीं है, लेकिन एक टीम तो है जो उनकी दिन रात सेवा कर रहे हैं, नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं, इसलिए भगवान के रूप को देखकर इतना आनंद आ रहा है हमको, दिव्य अनुभूति हो रही है ना। ये कोई सूट बूट पहनकर फिल्म स्टार के रूप में नहीं खड़े हैं, इनका अलग तरीका है, लेकिन उनको देखकर पता चलता है हमको कि सेवा बढ़िया हो रही है। फिर बीच में एक आदमी का दर्शन होता है, अरे यार अचानक घंटी बजाया, उसने भोग लगाया, पर्दा बंद किया, फिर पर्दा खोला, फिर आरती किया, वो चला गया। ऐसे हमारा भी बीच में दर्शन होता है, कोई आके कर रहा है कुछ सेवा, लेकिन सुबह 6 बजे किसने खोला, शनिवार को किसने श्रृंगार किया, सोमवार मंगलवार सोमवार बुधवार शुक्रवार को किसने माला बनाया, ये इसका दर्शन रोज नहीं होता है, लेकिन उसका जो टोटल कलेक्टिव जो परिणाम है उसको सब लोग रोज देख रहे हैं। हॉस्पिटल के सब लोग जो दर्शन करने 9 बजे आते हैं, ड्यूटी आने के पहले जाते हैं, जाने के पहले, वो सब लोग उस कलेक्टिव सेवा का परिणाम का अनुभव ले रहे हैं। और शायद माला बनाने वालों का और श्रृंगार करने वालों का और सुबह जगाने वालों का और भोग लगाने वालों का शायद डायरेक्ट संपर्क नहीं होगा, लेकिन आप सब मिलकर उन भगवान के विग्रहों की सेवा कर रहे हो। भगवान ऐसे लोगों को बहुत ऋणी होते हैं, बहुत कृतज्ञ होते हैं। भगवान इज वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस सर्विसेज। इसलिए मैं भी आपका बहुत ऋणी हूँ और बहुत कृतज्ञ हूँ। एक हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको हम देखते नहीं हैं, फिर भी वो बहुत बढ़िया से चल रहे हैं। मैनेजमेंट की तरफ से हमारा कुछ वहाँ पर इतना ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छे भाव से, निरपेक्ष भाव से आप सब लोग उस पर सेवा कर रहे हैं। तो हमारा एसेट क्या है? हमारा एसेट वो भाव है जिस भाव से हम सेवा कर रहे हैं, वही हमारा एक पूंजी है। वो पूंजी को बढ़ाना हमारे हाथ में है, और जितना आप बढ़ाएंगे उतने अधिक लोग इसमें जुड़ जाएंगे। और ख़ास करके आप चैलेंज ले लो कि जब सबसे अधिक समस्या होगी, सबसे अधिक ज़रूरत होगी, सबसे अधिक लोग कम होंगे, दिवाली है समझो, हाँ कोई क्रिसमस का वेकेशन है, दिवाली का वेकेशन है, सब लोग जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तब आप अपना कमिटमेंट दे रहे हो कि मैं करूँगा, मैं करूँगी, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ही नहीं कि आपको हर समय आपको पीछे रहना है, लेकिन वो उस व्यक्ति की तरह है, बोले आप सब शादी बना रहे हो, मैं उस कमरे में बैठूंगी, सामान का देखभाल करूँगी, लास्ट में बारात में आऊँगी। उसकी भी एक कीमत होती है, वैल्यू होती है, क्योंकि उसके बिना भी शादी पूरी नहीं हो सकती है। ऐसा व्यक्ति चाहिए, क्यों? हर समय मैंने देखा शादियों में सबका मूड इतना अच्छा रहता है कि वो कमरों में से चोरी हो जाती है। सब लोग एकदम मूड में रहते हैं, अपने भागते रहते हैं देखने के लिए, इसको ये भी देखना है, वो भी देखना है, वो कमरे की ओर दुर्लक्ष होता है, और बहुत लोगों के गहने, कीमती वस्तुएँ शादी में गायब हो जाती हैं। इसलिए मैं हर शादी में जाकर लोगों को चेतावनी देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर एक आदमी रखो, विश्वासु आदमी, जो इतना अट्रैक्शन नहीं रहेगा वहाँ जाने के लिए, लेकिन एक जगह बैठेगा, उसका भी शादी में वैल्यू होता है। एक उसी तरह से भगवान की सेवा में भी उस व्यक्ति का वैल्यू होता है जो सबसे कठिन समय पर जब कोई नहीं रहता है तो वो आके सेवा करता है। वो कथा होती है ना, वो चार पत्नियाँ होती है एक राजा की, राजा मरने जाता है तो सबसे पहले एक पत्नी बोलते मैं तो चली जाऊँगी, वो कौन है? पैसा आपका है ना। दूसरा बोलता है, दूसरी बोलती है कि मैं आपको शमशान घाट पर छोड़ने आऊँगी, वो कौन होता है? रिश्तेदार, आपको वहाँ तक पहुँचाने आएंगे। लेकिन आपकी भक्ति जो है वो आपके साथ में आएगी। वैसे ही ये जो आपका एसेट है, ये जो पूंजी आपकी है, ये आपके साथ जाएगी, ये जन्म जन्मांतर तक आपके साथ जाएगी। जहाँ पर भी आप जन्म लेंगे वहाँ पर आपके साथ में ये पूंजी जाएगी, आपका आपका भाव जो है। और आज से और कई जगह पर आप गए जन्म लेकर, तो वहाँ पर भी ये भाव आपके साथ में रहेगा, वो भगवान की सेवा में आपको लगा ही रहेगा, अब भगवान के जोड़ के रहेगा आपको। इसलिए बहुत कीमती सेवा है आप जो कर रहे हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? एनी क्वेश्चन? माता जी का प्रश्न है कुछ? प्रॉमिस करते हैं हाँ, स्थिति कभी कभी आप चाहते हो भी कभी कभी नहीं कर सकते हो, कोई समस्या आप ऐसे आते घर में हमारे, लेकिन अगर आपकी सही रूप में आपकी इच्छा है भगवान को सेवा करने की, तो भगवान भी आपको सहायता करेंगे, भगवान भी आपको ऐसा विकल्प देंगे जिससे आप वो कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपने कमिटमेंट दिया है और आपके बच्चे को बुखार आ रहा है, वो 50 दस्त हो रहे हैं उसको, फिर भी आपको जाना चाहिए, ऐसे बिल्कुल भी कभी नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर बालक को दस्त हो रहे हैं और आप उसको छोड़कर भगवान की सेवा में भाग रहे हैं, तो बालक की कृष्णा कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आप। वो बोलेगा कि जिस भगवान के लिए मुझे छोड़कर मेरी माँ चली गई वो भगवान का मैं दुश्मन हूँ, मैं नहीं चाहता उस भगवान को जिसके लिए मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई दस्त की अवस्था में। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं जो भी हमारा प्राथमिक कर्तव्य होता है, तो वो सब ठीक है। हमें अपने आप को जचना चाहिए कि हमारे अभी सेवा के कमिटमेंट के बीच में अभी कौन सी बाधा आ रही है, किस प्रकार की बाधा आ रही है, उसके अनुसार फिर आपको प्रायोरिटी करना चाहिए। अगर कर की पति बीमार है, अगर बच्चा बीमार है, अगर कोई सासू बीमार है, तो एक बात मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम अपने कर्तव्य को नहीं निभाएंगे, कर्तव्य छोड़कर भगवान की सेवा में भागेंगे, तो एक अच्छा उदाहरण नहीं है वो। पहले ज़माने में, जब प्रभुपाद के ज़माने में ऐसा था कि आपका डिलीवरी कल हो गया यस्टरडे, और आज सब लोग बच्चे को, नया बच्चा को कंधे पे लेकर किताब डिस्ट्रीब्यूट रस्ते पे कर रहे हैं, ऐसे करते थे लोग। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे को कहीं छोड़ दिया और रस्ते में बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डीटी वर्शिप कर रहे हैं। तो वो सारे बच्चे जो थे ना, 16 साल के होते ही कृष्ण भावना को छोड़ के चले गए, क्योंकि उनके मन में एक ही भावना बस गई कि ये जो कृष्ण है ना, इसके लिए मेरी मैया मेरे छोड़ के चले जाती है। जब चाहे तभी मैं सुनता हूँ कि ये भोग डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कृष्ण के लिए, या भगवान के लिए भोग बना रही है, या भगवान का श्रृंगार कर रही है, या भगवान का, ये भगवान मेरा दुश्मन है क्योंकि ये इसकी वजह से मेरी माँ मुझसे हमेशा दूर रही है, द्वेष उत्पन्न होता है उनके मन में। अभी आप बोलेंगे भगवान मैंने तो आपका ही सेवा किया, लेकिन थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल कम किया इसमें, क्या कि जो मूलभूत कर्तव्य है उसको निभाना भी बहुत ज़रूरी है। वो त्याग करके हम लोग भगवान को पसंद करने का प्रयास नहीं कर सकते, उसका विपरीत परिणाम होगा, ऐसा है वो। समझो आपने अगर सड़ा हुआ जिसको बुरशी आ गया है ऐसा प्रसाद खाया, तो आप बोलेंगे मुझे कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं प्रसाद खा रही हूँ लेकिन बुरशी का परिणाम शरीर में दस्त के रूप में होगा, और प्रसाद खाया उसका आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा आपको, लेकिन बुरशी अंदर जाने के बाद में जो परिणाम होना है वो भी होगा। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम हम तोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा है वो। अगर आपको डायबिटीज़ है और आपके सामने बहुत हैवी वो पनीर का स्वीट आया और आपने उसको खाया, बोले प्रसाद है, कुछ नहीं होना चाहिए, प्रसाद है भगवान का, कुछ नहीं होगा। जैसे ब्रजवासी लोग के घर में जाएंगे ना तो हमको मिठाई चार चार देते हैं, मैं कहता हूँ मुझे डायबिटीज़ है, बोले नहीं नहीं ठाकुर जी का प्रसाद है, कुछ नहीं होगा, कुछ कैसे नहीं होगा, ठाकुर जी का प्रसाद खाएंगे उसका लाभ मुझे आत्मा को मिलेगा, लेकिन वो जो शुगर खा रहा हूँ उसका परिणाम शुगर के लेवल पे होगा निश्चित रूप से होगा। ये प्रकृति का नियम है, इसको हम टाल नहीं सकते हैं भगवान का नाम लेकर। तो ऐसी समस्या आएगी तो हम बता सकते हैं कि ऐसी समस्या है, लेकिन अगर ऐसी मूलभूत समस्या नहीं रहेगी तो हम लोगों को आना चाहिए क्योंकि हमने शब्द दिया है। और अगर समझो हम जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जायज समस्या कुछ है, बता सकते, बहाना ऐसा है कि जा नहीं सकते हैं, तो हमको भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान अगली बार जब सेवा का वादा करूंगी कृपा करके संकट मत देना ऐसे। अगर किसी को बीमार करना है तो उसको बाद में करना, ताकि मैं उनकी सेवा भी अच्छी तरह कर सकूं और आपका दिया हुआ वादा पूरा कर सकूं। ये नहीं कि मैं वादे का बहाना ढूंढ रही हूं कि मैं अच्छा बहाना मिल जाए तो आज नहीं जाऊंगी मैं, कोई अच्छा बहाना भगवान दे रहा जब आज तो तुरंत बच्चे को बुखार आ जाएगा, और आप बोलेंगे फिर मेरा कर्तव्य निभा रही हूं मैं। बेसिकली क्या है ना, सब लोगों को वो प्रार्थना करना चाहिए कि मैं दिया हुआ वचन पालने में समर्थ रहूं हमेशा, आई वॉन्ट टू फॉलो माई वर्ड, मैं आपका, मेरा शब्द जो मैंने आपको दिया है आपकी सेवा के लिए मैं फॉलो करना चाहती हूँ। भगवान फिर क्या नहीं कर सकते। हमारे डॉक्टर हैं एक मित्र, किशोर गोपाल प्रभु, डॉक्टर रांगणेकर, वो बच्चों के डॉक्टर हैं। वो कहते हैं कि जब से मैं निश्चय पूर्वक राधा गिरधारी में जप करने के लिए जाने लगा, मंगल आरती के बाद 5:15 को पहुँचते हैं वो जप करने के लिए, तब से मुझे उस काल में इमरजेंसी कॉल आने बंद हो गए। आजकल मुझे या तो 4 बजे के पहले कॉल आते हैं या 8 बजे के बाद में आते हैं। मतलब क्या हुआ, वो भगवान के मंदिर में जाकर जप करने की क्रिया से इतने आसक्त हो गए कि भगवान ने भी उनके कॉल एडजस्ट कर लिए। कभी कभी बोलते हैं महीने में एक बार आता है जप के समय कॉल, नहीं तो अधिकतर मेरे जप के समय कॉल नहीं आता है। तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि भगवान नियंत्रक हैं, वो आपकी भावना को देखते हैं, वो सब व्यवस्था करते हैं। उनको किसी को कॉल भेजना ही है तो वो उसको बाद में कॉल, किसी को बाद में दर्द होगा और कॉल बाद में आएगा उसका, मतलब अपना बिजनेस का भी फर्क नहीं पड़ेगा और उनका जब भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि भगवान आपकी भावना को देख रहे हैं और आपकी भावनाओं को देखकर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात समझना है आपको कि हमारा भावना कैसी है। हमारी भावना सही होगी तो भगवान उसको समझते हुए आपकी व्यवस्था करेंगे आपके लिए, और आप आपके हर दिए हुए शब्द को पालन करने में समर्थ रहेंगे, सफल रहेंगे। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ समझा नहीं प्रश्न क्या है? नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आपके घर में दुर्गा है, दुर्गा की पूजा, ऐसा मना कर रहे हैं उसको? नहीं, प्रश्न क्या है उनका समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ घर में करने देते नहीं है। हाँ 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 तो प्रश्न क्या है? क्यों नहीं कर सकती है? ऐसा कुछ नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका। अगर आप आपके घर में जो भी चल रहा है विधि, देवी का, गणपति का, गणेश शिव जी का जो विधि चल रहा है उसका आप आदर करेंगे तो कोई आपको समस्या नहीं आएगी। अगर आपके घर में इतना संघर्ष हो रहा है तो आप तो बिना कंठी पहन के भी जप कर सकते हैं, उसमें क्या है? अगर वो पहनने का विरोध कर रहे हैं, मैं आपको एक लड़के की कहानी बताता हूँ। वो हमारे हॉस्पिटल में नर्स थी पहले, उसके घर में उसको मारते थे जप करने के लिए। सुनो ना, पूरी बात सुनो। तो वो लड़की केवल 20 साल की थी जब वो पढ़ती थी नर्सिंग में, और भक्त बन गई तो उसके चार भाई उसको मिलकर मारते थे, और इतना मारते थे कि वो बेहोश हो जाती थी कभी कभी। जप नहीं करना है, उसके पुस्तक उठा के उसने समुद्र में फेंक दिए, माला उठा के फेंक दी। तो वो लड़की रात को 1:30 बजे उठकर अपने पांगरुण के अंदर 16 माला पूरी करती थी और सोती थी बाद में। जब सब लोग सो रहे हैं तभी वो 1:30 बजे उठती थी रात को, और अपने बिस्तर में ही ऐसा पूरा ओढ़ के उसके अंदर 16 माला जप करती थी और सोती थी बाद में। इमेजिन, मैं तो नहीं कर सकता ऐसे। कई साल तक किया उसने ऐसा, कई साल तक किया। उसकी कहानी सुनकर ब्रह्मचारी लोग रोते थे, समान प्रभु जैसे। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है भगवान की तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे उसके ऊपर, सोच रहे हैं आप? सोचो आप, हर तरफ से उसको विरोध है, माँ मार रही है, पिताजी मार रहे हैं, चार भाई मिलके मार रहे हैं उसको, मना करने में इतना, मतलब इतना मना कर रहे हैं कि आप उसका विरोध ही नहीं कर सकते। आप सबसे छोटी बहन, इतनी सी घर सी छोटी सी बहन है, वो रात को 1:30 बजे उठकर जब सब लोग डाराडोर सो रहे हैं तब वो अपने ओढ़ने में बैठकर जप करती थी। कोई डर नहीं, आपका भाव भगवान देख रहे हैं। अगर आपका दिल में इच्छा है तो भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे। एक और कथा हमारे बरसाने के महाराज वो बताते हैं कि वे घर में गए थे और रहे थे उस घर में कुछ दिन के लिए। तो उस घर में भक्ति का वातावरण था बहुत। तो कन्याओं को पिताजी ने हर एक कन्या को एक लॉकेट दिया था जिसमें कृष्ण का फोटो था। और उनका नियम था कि सबसे पहले वो उठते ही पहले वो लॉकेट देखने का, भगवान का दर्शन करने का, फिर बाकी का काम शुरू करने का। तो पूरा बचपन में उन्होंने ये निभाया। लेकिन जब शादी उनका हुआ ना तो वो नाश्ते के घर पे हुआ सब लोगों का। तो कुछ भी करने को अलाउड नहीं उनको, कुछ भी करने का अलाउड नहीं है। लेकिन वो अपने गले का लॉकेट रोज देखते थे और प्रार्थना करते थे। बहुत साल होने के बाद में धीरे धीरे उनके घर के लोग परिवर्तित हो गए और धीरे धीरे भक्त बन गए। फिर कई साल के बाद में, मतलब बचपन की उम्र में थे तभी जब वो उनके महाराज उनके घर पे गए थे, 200 साल के बाद में जब वो खुद बुजुर्ग हो गए, मतलब 35-40 ईयर्स की हो गई, तो एक बार वो बाबा को मिलने आए उधर और बोला, बाबा जी आपने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना, बोला आप हमारे घर में बचपन में आए थे रहने के लिए, आपने हमको बताया था कि आपका ये जो रीति रिवाज है इसको बनाए रखना रोज श्रद्धा के साथ, और आपकी ये आज्ञान हमने पालन किया, और आज इतने सालों के बाद में हमारे घर में अभक्त हमारे पति थे सब भक्त बन गए हैं। तो वो मैं बताने आई आपको, धन्यवाद देने के लिए आई कि आपने हमको एक आशीर्वाद दिया था, उसको हमने पालन किया और उसकी वजह से आज धीरे धीरे सब परिवर्तित हो गया। तो अगर आपके अंदर बदल, मराठी में कहते हैं जिद्द, जिद्द यानी कि आपके अगर निश्चय होगा, आपके अंदर निग्रह होगा, तो उसको देखकर भगवान धीरे धीरे परिवर्तित कराते हैं। आपको भक्ति करने में समस्या जरूर आएगी, कभी भी नहीं आएगी ऐसा नहीं होगा, अलग अलग प्रकार की आएगी। किसी के घर में अलग प्रकार की समस्या, आपके घर में अलग प्रकार की समस्या, मेरे घर में अलग प्रकार की समस्या, लेकिन आपको निश्चित रूप से भगवान का सहारा लेते रहना चाहिए और जितना हो सके उतना करते रहना चाहिए। फिर एक दिन चमत्कार होगा और सब चेंज हो जाएगा। सब भक्त लोग इस अवस्था से गुजरते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है, जितना आपको बस में उतना करते रहना है। जो समस्या में आप है उस समस्या में आपको जो बेसिकली जो करना है वो करते रहना चाहिए, फिर भगवान आपको सहारा देंगे उसके बाद। ठीक है, यस प्रश्न। एक ही उसका उपाय है कि बार बार इस बात को सुनना, बार बार उसको दोहराना, बार बार सुनना, जो सत्संग में होता है। अच्छा संग होगा तो आपको ये समस्या आएगी, आपकी कसौटी भी होगी, परीक्षा भी होगी, आपको लोग बोलेंगे, लोग आपको क्या बोलना उकसाएंगे, ऐसा बोलकर आपको दुखाएंगे आपके दिल को। लेकिन आपको ऐसे संग में रहना चाहिए हमेशा, सत्संग में, जिसमें आप बार बार सुनेंगे इस बात को कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। वैसे अभी आपको लगता होगा कि हमको तो हॉस्पिटल में ट्रस्टी पोजीशन प्राप्त है, हमको ये पोजीशन प्राप्त है, ये अधिकार प्राप्त है, लेकिन हर स्थिति में हर पोजीशन में अपनी अपनी समस्याएं होती है। और आपको भी लगेगा अरे क्या फ़ायदा, इतना साल सेवा किया क्या मिला, लेकिन वो क्या मिला इसके लिए हम लोग सेवा कर ही नहीं रहे। बेसिकली हमारा वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो गलत होगा ना, तो आपको दुखी होते रहेगा आगे जाके। आप जिस व्यक्ति की सेवा करने का आ रहे हो उसकी सेवा आपको मिल रही है, ये हमारी पूंजी है। जब भी हमें दुख होता है किसी चीज में, तो हम लोग अब वो रिवाइज करते हैं कि हम लोग यहां पर क्यों हैं, व्हाई वी आर हियर। अपने आप को पूछो पहले, व्हाई आई एम हियर, आई एम हियर टू प्लीज द लॉर्ड। मैं यहां पर भगवान को पसंद करने के लिए आई हूं, उनकी सेवा में आई हूं बस। और आपकी सेवा में आपको क्या फल देना है ये भगवान जानते हैं, और क्या नहीं देना है वो भी जानते हैं। पांडवों ने कभी पूछा क्या, क्या भगवान इतना सेवा किया, वन में भेज दिया आपने, क्या फायदा सेवा करके? आपकी सेवा किया, हमारी पत्नी का कपड़ा निकालने की कोशिश किया, आपके भक्ति होने के बावजूद, हाँ राज्य छीन लिया मेरे बच्चों का, कोई कुंती ने कंप्लेन किया, पढ़ा क्या आपने? भरा देख रही है कब कृष्ण आएगा, मैं उसको पूछूंगी मेरे पांच पांडवों ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि तुमने एक गांव भी उसको दिलाया नहीं, तुम्हारी भक्ति करके क्या मिला उनको? ये कथा जब पढ़ेंगे ना तो समझेगा कि पांडवों को इतने बड़े भक्त होने के पर भी क्या मिला, लास्ट में मिला। और जैसे ही भगवान ने दिया और भगवान चले गए, वो छोड़ के वो भी चले गए, ये प्रूफ है उनका कि ना उनको उस राज्य में अटैचमेंट था, उनको केवल अटैचमेंट भगवान में था। जब वन में थे तभी अटैचमेंट था, राज्य मिला तभी भी उनका ही अटैचमेंट था उनको, ये उसका प्रूफ है। कभी उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया, कभी भी कुंती ने ऐसा कंप्लेंट नहीं किया, ना धर्मराज ने कंप्लेंट किया, ना द्रौपदी ने कंप्लेंट किया। अरे द्रौपदी का वस्त्रण का प्रयास किया गया, कभी द्रौपदी ने पूछा क्या, भगवान मैंने आपकी इतनी भक्ति की, आपने मुझे ये प्रसंग दिखाया आज, का प्रश्न किया? उसको प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन उसने प्रश्न किया का कभी कि सब कुछ सह लिया हमने, लेकिन ये ऐसा प्रसंग हमने हमारे ऊपर आपने डाला, वो भी घर पे नहीं, किसी के प्राइवेट में नहीं, सभा में, सब जनता के सामने, वो बड़े बड़े जनता के सामने। जब इतना पर होने पर भी उन्होंने सवाल नहीं किया। प्रहलाद को आज तक जितना कष्ट हुआ है वो पूरे वेद के इतिहास में किसको नहीं हुआ है आज तक। लेकिन प्रहलाद ने कभी प्रश्न किया क्या भगवान को कि भगवान मैंने आपके लिए इतना सब किया, प्रतिकूल जगह में रह के भजन किया आपका, राक्षस के कुल में रहकर भी मैंने अपना मेरा ब्रिद नहीं छोड़ा, मेरा वचन नहीं छोड़ा, मेरा कार्य नहीं छोड़ा, फिर भी आपने मुझे आग में जलाया, विष में पिलाया, इसमें किया, सब क्या नहीं किया आपने मेरे लिए, यही फल है कि आपके यहाँ भक्ति करने का? ऐसा बोला कभी उन्होंने? उल्टा भगवान उनको बोल रहे हैं कि प्रहलाद तुमने मेरे लिए कितना कष्ट सहन किया। तो भगवान को प्रहलाद बोल रहे हैं भगवान ने मेरे कष्ट को सहन नहीं किया, मैं तो आपका नाम लेता रहा और अपने आप सब काम होता रहा, मैं नहीं जला, सांप ने मुझे नहीं काटा, विष ने प्रभाव नहीं किया और हाथी ने पाँव नहीं दिया, ये सब आपने किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो हम लोग कथा क्यों सुनते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ भाई हम तो प्रहलाद नहीं हैं, हम तो इतने महान नहीं हैं, ऐसा बोल सकते हैं। होगी द्रौपदी, मैं थोड़ी द्रौपदी हूँ, ऐसा बोल सकते हैं आप। फिर ये कथा का प्रयोजन क्या है? फिर ये कथा जब बार बार सुनते हैं, सत्संग में रहते हैं, तो बार बार अलग अलग प्रसंग में हमको प्रेरणा मिलती है कि लास्ट टाइम मैंने सुना था तब मैं वो प्रसंग में थी, तब मैंने अपने आप को संभाल लिया था कथा सुन के, आज मैं ये प्रसंग में हूँ फिर वो कथा सुनी, आज मैंने फिर प्रेरणा लिया कि हाँ भाई ठीक है जो भी है अच्छा। इसलिए हमको दुख कब होता है मन में? जब हमारा अच्छा सत्संग छूटता है ना, तो फिर हमको फल की अपेक्षा होने लगती है, मुझे क्या मिला ऐसा विचार आने लगता है। ये तब आता है जब हमारा सत्संग अच्छा छूट जाता है। जब हम अच्छे संग में रहते हैं ना तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आपको क्या लगता है राधानाथ महाराज, इंद्रदुन्न महाराज, इनके लेवल पे कोई समस्या नहीं है? जया अंगी मोटेपना तया यातना कठिना, जितना आदमी भक्ति में आगे बढ़ता है ना उतनी उसकी समस्याएं बड़ी बड़ी हो जाती है, आप उसको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतना कष्ट उनको होता है। तो वो क्या आपको आगे रोते हैं क्या, देखा मैं आपका गुरु बना इतना मुझे कष्ट हो रहा है, ऐसा बोलते हैं कभी आगे? वो तो आपके सामने हंसते रहते हैं हमेशा, आपको सांत्वना देते रहते हैं। जब आप उनकी समस्या ले, आपकी समस्या लेके उनके पास गए तो बोलते नहीं है अरे आप समस्या लेके आए, मेरी समस्या का तो कितनी बड़ी समस्या है, आप क्या रो रहे हो, ऐसे नहीं बोलते आपको। वो आपकी समस्या को बड़ा समझ के उसकी सांत्वना करते रहते हैं आपकी, तो अपना रोना उसमें मिक्स नहीं करते हैं। जब समझो आप भक्ति रसा महाराज के पास जाएंगे या राधा स्वामी महाराज के पास जाएंगे या और किसी महाराज के पास जाएंगे, अपना रोना लेकर जाएंगे, तो कभी आपको ऐसा अनुभव आया क्या कि उन्होंने अपना रोना शुरू किया आपके सामने? जबकि है उनके पास ऐसा बोलने के लिए, आपके पास जगह है, लेकिन वो आपको पूरी करुणा के साथ सांत्वना देते कि नहीं? क्योंकि उनका संग जो है ना बहुत उच्च दर्जे का होता है हमेशा। वो बार बार ये उदाहरण जो है शास्त्रों के और एक दूसरे के देखते रहते हैं और सोचते ही है कि अरे मेरी योग्यता ही क्या है, सेवा मिल रही है वही मेरी बड़ी भाग्य की बात है, और जब भगवान तेको देना है तब दे देंगे, तब मैं जाऊंगा। अच्छे संग की जरूरत है मुझे। अच्छा संग नहीं होगा तो झगड़े होंगे, अच्छा संग नहीं होगा मतभेद होंगे, अच्छा संग नहीं होगा गलत फहमियाँ होंगी, मन मैले हो जाएंगे, मुझे नहीं करना है, मैं भी रिटायर हो जाऊंगी उसमें से, ऐसा भाव आते हैं मन में। ये जब भाव अपने मन में आ रहे हैं कि मुझे नहीं करना है अभी, इसका मतलब माया आपके ऊपर पूरी हावी हो चुकी है, माया विजयी हो गई है, माया का प्लान सक्सेसफुल हो गया है। भक्त के मन में ऐसा विचार लाना कि मुझे अभी भगवान की सेवा नहीं करनी है, मुझे जाना ही नहीं इसके अंदर, इसका मतलब माया का प्लान सफल हो गया। माया का प्लान ही वही है, जीव को भगवान की सेवा से छोड़ा ना, और वो सक्सेसफुली आपके मन में बैठ गया विचार, इसका मतलब वो यशस्वी हो गई, आप परास्त हो गए। लेकिन आपको लग रहा है मैं बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ, बुद्धि का निर्णय ले रही हूँ, नहीं करना है मुझे इसके आगे, लेकिन माया के प्रभाव में आपका निर्णय हो रहा है। जैसे भगवान के भक्त के संग में आएंगे आपका विचार बदलेगा, अरे सबसे बड़ा मेरा जो वैक्सीन है वही छोड़ रही हूँ मैं। भव रोग के प्रति जो सबसे बड़ा वैक्सीन क्या है? सेवा। अगर आपको भव रोग से प्रभाव से मुक्त होना है, सबसे बड़ा वैक्सीन टीका जो है ना वो भगवान की सेवा है, भक्तों की सेवा। दो चीज़ें आपको सबसे बड़े माया के प्रभाव से बचाएगी, वो है भगवत सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा। ये जो व्यक्ति करता है ना, उसका माया का अधिकार नहीं है उसको छूने का, माया छू ही नहीं सकती, कितना प्रयास करो छू नहीं सकती उसको। ये इंपॉर्टेंट बात हमको समझना चाहिए, उसके लिए संग चाहिए, जो संग में आप सुन सकते हैं इस बात को, उदाहरण के साथ सुन सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि असली बात क्या है। नहीं तो आपको दो और लोग मिलेंगे, अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया, इतना साल सेवा किया, क्या मिला तुमको, बंद करो, बहुत हो गया, अभी घर में बैठ के अपना अपना करो। ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, हाँ मैं हाँ मिलाने वाले, आप बोल हाँ मैं कर रहे सही कर रहे, दो चार लोगों ने भी बोला मुझे ऐसे ही करना चाहिए। ये माया का चक्र बहुत बड़ा मुश्किल चक्र होता है। तो वो नवसिखिया भक्त का लक्षण है। नया भक्त का लक्षण क्या है? मुझे क्या मिलेगा? भगवान का नाम करके प्रमोशन हुआ क्या? लड़के की शादी हुई क्या? घर का लोन फिट गया क्या? तो क्या फायदा भक्ति करके? कहते थे बहुत लोग प्रश्न करते ना, इतना साल भजन किया फिर भी बच्चे को कैंसर हो गया, इतना साल भजन किया फिर भी बच्चे की शादी टूट गई, यही लाभ है क्या भक्त भगवान की भक्ति करने का? इसका मतलब वो नवसिखिया भक्त है, इसलिए वो सोच रहा है ऐसा। इज अ न्यू डिवोटी, उसको संघ की जरूरत है। लेकिन जो मंझला हुआ खिलाड़ी है, वो कई कठिनाइयों से गुजरा हुआ है, वो जानता है कि उसका पूंजी फल नहीं है, उसका पूंजी सेवा है, तो सेवा मिल रही है वही उसकी पूंजी है। जब ये आपके समझ में आएगा तब आप प्रगति कर चुके हो, यू आर एडवांस्ड। जब तक फल की अपेक्षा कर रहे हो तो कर्मकांड के लर्जे पे हो, भक्त भक्ति में नहीं हो। कर्मकांड का मतलब क्या है? पुत्र कामेष्टि, पुत्र की इच्छा से यज्ञ किया, पुत्र हुआ, हरि बोल, सक्सेसफुल, उसको कर्मकांड कहते हैं। ज्ञान कांड का मतलब क्या है? कुछ नहीं करना है, इतना ज्ञान हो गया है कि सब कुछ मिथ्या है, विरक्ति। और भक्ति का मतलब क्या है? कि भक्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं। प्रभुपाद को पूछते थे ना कि जप करके क्या मिलेगा, बोला और जप मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, और जप मिलेगा। जो साध्य है वही साधन है, जो साधन है वही साध्य है, जो कर रहे हैं वही साध्य है, उसको ही प्राप्त करना है। क्या मिलेगा? स्वर्गवास मिलेगा, अप्सराओं का संग मिलेगा, ये कर्मकांड है। और क्या मिलेगा? और सेवा मिलेगी। क्या करोगे गोलोक में जाके? और सेवा करेंगे। यहाँ पर कुछ सेवा कर रहे हैं ताकि वहाँ जाके सेवा करें, अरे करना तो वही है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है? फिर ऐसा लगेगा आपको, यहाँ पर जो कर रहे हैं वहाँ पर जाके भी वही करेंगे। अगर यहाँ पर आपको डीडी वर्षिप में रुचि हो जाएगी, वहाँ पर भी ठाकुर जी का श्रृंगार करने का सेवा मिलेगा आपको। यहाँ पर जो आपने उत्सव मनाया वही उत्सव गोलोक में जाके मनाएंगे आप, शास्त्र में लिखा है। इसलिए हम हर साल उत्सव मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, पुष्पाभिषेक मनाते हैं, आज पुष्पाभिषेक गोपीनाथ मंदिर में है। ये उत्सव क्यों मनाते हैं? क्योंकि वही चीज़ें जो हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कर करके वही चीज़ें हम जाके शुद्ध भाव से गोलोक धाम में भी करने वाले हैं, वही चीज़ें करने वाले हैं। रथ यात्रा, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, होली, रंगीली होली, गौर पूर्णिमा, जो भी उत्सव मनाते रथ यात्रा, वो सारे उत्सव वहाँ पर भी गोलोक में मनाए जाएंगे, में कोई संदेह नहीं है। तो आज जो आप काम कर रहे हैं वो गोलोक धाम का ही काम कर रहे हैं, और यही अंडरस्टैंडिंग जिसको है वही उसकी पूंजी है, वो मिल रहा है वही पूंजी है हमारी, उसके फल में क्या मिलेगा ये पूछना मूर्ख मूर्खता की बात है। भगवान के दिल में आपको जगह मिली है, उसके बाद में आपको यहाँ पर कूपन मिला कि नहीं मिला, वहाँ पर प्रवेश मिला कि नहीं मिला, ये तो सिंपल बातें हैं, ऑर्डिनरी बातें हैं। आप कहेंगे आपको बोलना आसान है, आपको क्या है, आप बहुत पॉलिटिकल आदमी हो, बहुत अच्छी तरह बातें करते हो, घुमा फिरा के बहुत समझाने का प्रयास करते हो, क्या कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, हर एक भक्त को 40 साल के बाद मन में प्रश्न आ सकता है, क्या मिला, क्या हासिल किया। एक लड़की डिवोर्स होकर घर पे आ गई है, वो बच्चे को कैंसर हो गया है, और पिताजी भी ऐसे ही एक्सीडेंट में मर गए, क्या हुआ, क्या मिला, क्या भक्ति कर गई, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन भौतिक दुनिया में ठीक होगा इसका वादा किसने किया है, भगवान भी नहीं करते उसका। यशोदा माई ने ऐसा बोला क्या, क्या फायदा हुआ कृष्ण को जन्म देके, हर रोज राक्षस, कोई शांति का है ही नहीं कुछ, ये बच्चा हुआ ही क्यों, नहीं था तो भी अच्छा था, ना राक्षस था, ना बारिश था, ना बाढ़ थी, कुछ नहीं था, जब से आया तब से परेशानी है, बोल सकती थी ना वो, उसके जीवन में कौन सा परिवार से इसके जीवन में शांति थी, बताओ मुझे आप। हर रोज आतंक था उनके जीवन में, हर रोज आतंक, हमारे जीवन में एक 6 महीने में बॉम्ब होता, बॉम्ब ब्लास्ट, तो इतना परेशान होते हम लोग। जब ब्रज में रोज आतंक था, एक अरिष्टासुर आया ना, एक साथ भूकंप, एक साथ तूफान, और एक साथ देखो नाक से हवा तूफान की तरह आ रही थी, पैर से भूकंप हो रहा था, और पूंछ से आकाश के बादल यहाँ वहाँ हो रहे थे, और औरतों के गर्भपात हो रहे थे। ऐसा कभी आतंक हुआ है आज तक आपके जीवन में, कोई पाकिस्तान ने किया है कभी आपके जीवन में? 6 महीने में एक बार 12 बॉम्ब फोड़े तो खाली अग्नि का प्रलय हुआ कुछ समय के लिए। लेकिन वृद्धवासियों को जीवन में हर रोज आतंक होता था, जो आज हम तुलना भी नहीं कर सकते। कभी कंप्लेंट किया क्या? बाल बालों ने कंप्लेंट किया, नंद महाराज ने किया, यशोदा ने किया, हे विदाथा क्या चल रहा है। वो कृष्ण का उनके पास होना ही, कभी किसी ने बोला नहीं, सबकी जड़ ये कृष्ण है, इसको शिफ्ट करो, यहां से राजस्थान भेज दो उसको, उधर आतंक होंगे हम लोग शांति से रहेंगे, इसको बोर्डिंग में डाल दो, बोर्डिंग में तो बोर्डिंग में राक्षस पाएंगे, उधर जो होगा वो नहीं दो, अपने को क्या करना है। ऐसा हुआ क्या कभी? क्योंकि उनको पता था कि यही हमारी पूंजी है, इसके साथ आतंक भी हमको मंजूर है, हमको ये चाहिए बस, आतंक हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, इसका होना जरूरी है, हमको ये चाहिए, हमको ये प्यारा है, हर तकलीफ के साथ प्यारा है हमको ये, उसको भक्ति कहते हैं। इतना होने पर कभी कंप्लेंट कभी आएगा किसका? अरे इतना वर्षा किया इंद्र ने, इतना भयंकर वर्षा किया, और उसी को पुकार रहे वो कृष्ण को, कृष्ण कृष्ण महाभाव, और वो क्या बोल रहा है, चलो मेरे साथ। तो ये नहीं बोले अरे तुमने इतना गड़बड़ किया इसलिए वर्षा हो गई, आपको अब कहाँ ले जा रहे हो हमको आप, ऐसा बोला क्या? वो चुपचाप चले गए उसके पीछे, अभी क्या करने वाले हो? बोलते मैं ये पहाड़ को उठाऊंगा। अच्छा बात कर रहे हो, नॉनसेंस बात करते हो तुम, ऐसा बोला क्या? जिसकी वजह से वर्षा हुई, जिसकी वजह से गाय बैल घर बह गया, जिंदगी तबाह हो गई, उसी के पीछे जा रहे हैं, इसको कहते हैं भक्ति। उधर क्वेश्चन मार्क नहीं है, मुझे अच्छा आराम मिला तो तुम मेरे, तकलीफ हुआ तुम तकलीफ, चले जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं है वो। हर तकलीफ के साथ तुम हमको चाहिए, हर समस्या के साथ आप हमको पसंद हैं, दैट इज भक्ति। सीता ने कभी कंप्लेंट किया क्या? गर्भवती अवस्था में उसको वाल्मीकि आश्रम भेज गया, निष्पाप थी बेचारी वो, कितना कष्ट हुआ उसको। मैं कभी राम को कोसा उसने, ऐसा पति है ये, इससे अच्छा शादी बिना रहना अच्छा था, धनुष लाके तोड़ा, इतना पराक्रम किया, इस किन के लिए पराक्रम किया? दुनिया में सब जय जयकार हुआ, शिव धनुष तोड़ा, मैं कितना गर्व में थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसे होने वाला है जिंदगी में मेरे। ऐसा बोला उसने कभी? हम लोग बोलते थे ऐसे नहीं चाहिए, ऐसा मुझे पति धनुष तोड़ने वाला। हाँ, गर्भवती अवस्था में मुझे भेज दिया वाल्मीकि के आश्रम में, कितना कष्ट दिया मुझे। फिर बोला क्या उसने अभी आज तक? इसको भक्त बोलते हैं। भक्त वो है कि वो हर चीज को सहते हुए भी धन्यवाद ही करता है, थैंक यू, कि मुझे गौरव है कि मैं ऐसी व्यक्ति की पत्नी हूं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। जय जगन्नाथ स्वामी की जय हो।